शुभ संध्या मित्रों, आइए प्रार्थना के लिए हम सब एक क्षण के लिए खड़े हो जाएं, यदि आप चाहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम सब यहाँ पर इस पवित्र सभा में फिर से एकत्र हुए हैं आज रात्रि प्रभु की सेवा में, और आपने ये प्रतिज्ञा की है कि जहाँ कहीं भी हम एक साथ मिलेंगे, जैसा कि हम में से दो या तीन, तो आप हमारे बीच में होंगे, और हम आश्वस्त हो सकते हैं कि आप यहाँ हैं, क्योंकि हम उसके नाम में जमा हुए हैं। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि आप आएंगे और इस दूसरी मोहर को हमारे लिए तोड़ेंगे, और जैसा कि कवि ने कहा है, वो बीते समय के पर्दे के पार देखना चाहेगा, और प्रभु हमारी ये इच्छा है कि बीते समय को देखें और देखें कि आगे क्या है। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो मेमना घात किया गया था, अब हमारे बीच में आएगा और मोहर तोड़ेगा और हम पर प्रकट करेगा वो चीजें जिन्हें हमें देखने की आवश्यकता है। प्रभु, यहाँ पर कुछ होंगे जो अभी इस महान संगति में मसीह के आसपास नहीं आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि वे अनंत निर्णय लेंगे कि परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं। यदि कोई बीमार है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें चंगाई देंगे। यहाँ पर बहुत सारे रुमाल रखे हैं जिनके ऊपर मैंने अपने हाथ रखे हुए हैं, बाइबल की इस बात की याद में, संत पौलुस, जहाँ वे पौलुस की देह और कपड़ों से रुमाल छुआ कर ले गए और प्रेत आत्माएं लोगों को छोड़ गईं और वे चंगे हो गए थे। हम प्रभु का आगमन समीप देखते हैं। हम जानते हैं कि समय पास आ रहा है, ये चीजें 1900 वर्षों बाद कलीसिया में फिर से वापस आ रही हैं। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जो चीजें हम मांग रहे हैं आप प्रदान करेंगे। अपने सेवक को शक्ति दें और अपने सेवक को हर जगह सहायता करें प्रभु, और विशेषकर हम जो यहाँ आज रात्रि पर जमा हैं, ताकि हम वचन को लेने के योग्य हो सकें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। निश्चय ही प्रभु के घर में आज रात्रि फिर से वापस आना अच्छा है, और मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत से खड़े हुए हैं। इस विषय में मुझे खेद है, परंतु वहाँ कठिनता से हम कुछ और कर सकें। हमारे पास आराधनालय है, जैसा कि उसे बड़ा किया है, यहाँ हम जहाँ 300 या 400 से और अधिक अंदर आ सकते हैं, परंतु इस प्रकार की विशेष सभाओं में इस प्रकार से ये अधिक भीड़ हो जाती है। अब ओ, मेरा बहुत ही अच्छा समय रहा प्रार्थना और इन मोहरों का अध्ययन। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी, मैं आपके लिए निश्चित हूँ, यदि आपके लिए उतना ही अर्थ है जैसा कि मेरे लिए, तो ये निश्चित ही एक आपके पास एक शानदार समय है। और मेरे पास एक सभा के बाद मैं अपनी लड़की मित्र को बुलाना चाहता हूँ, ये उसका जन्मदिन है, आज वो 12 वर्ष की हो गई है, सारा मेरी पुत्री। और फिर अगला परसों मुझे एक और फोन करना है, क्योंकि ये बेकी का जन्मदिन है। और अब आज रात्रि हम इस दूसरी मोहर का अध्ययन कर रहे हैं, पहली चार मोहरों के लिए वहाँ चार घुड़सवार हैं, और मैं आपको बताता हूँ, आज फिर से कुछ घटित हुआ, और मैं जाता और वहाँ पुराने लेख जो मेरे पास हैं लेता हूँ, जिन पर मैंने बहुत पहले बातें की, और मैंने सोचा, भाई मैंने वही किया जो मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, और बहुत से लेखक और चीजें, और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगा और इसे उसे देखूंगा। और पहली बात, आप जानते हैं कि कुछ घटित हुआ और कुल मिलाकर ये भिन्न है, ये अलग तरह से आया। तब मैंने अपनी पेंसिल उठाई और जल्दी से, और जितनी जल्दी जल्दी मैं लिख सकता था, लिखना आरंभ कर दिया, जबकि वो वहाँ है। ओ, ये कुछ घटित हुआ लगभग एक आधा घंटा पहले। मैं भाई वुड्स को बता रहा था कि कुछ मिनटों पहले यहाँ आ रहे थे, बस कुछ, आप जानते हैं बहुत सारी चीजें घटित हुई, आप उस विषय में बात नहीं कर सकते, आप जानते हैं, परंतु कुछ घटित हुआ जिससे मेरी बहुत सहायता हुई। यहाँ इस भवन में कहीं एक मेरा मित्र है, निसंदेह आप सब मेरे मित्र हैं। ये भाई ली वाइल है, वो मूल्यवान भाई है और धर्मशास्त्र का वास्तविक विद्यार्थी, डॉक्टर वाइल बैप्टिस्ट पवित्र आत्मा के साथ, और वो एक, मैं ये प्रशंसात्मक में नहीं कह रहा हूँ, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा व्यवस्थित विद्यार्थी में से है जो मैं जानता हूँ हमारी श्रेणी में, और उसने एक छोटी सी टिप्पणी लिख भेजी और बिली के हाथ भेजी, और बिली इसे मुझे नहीं समझा सका। मैं सोचता हूँ, मैंने इसे नहीं पढ़ा, परंतु मैं वो कहने जा रहा था जो उसने यहाँ कहा, और बस मैंने इसे पढ़ा। भाई वाइल, यदि आप यहाँ हैं, मैंने इसे लगभग 6 महीने पहले पढ़ा। मैं पक्का नहीं हूँ, उसने कहा, भाई बिल, मैं पक्का नहीं हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि पॉलीकार्प संत यहुन्ना का चेला था। ये सही बात है, वो था। मैं सोचता हूँ इरेनियस पॉलीकार्प का चेला था, ये बिल्कुल ठीक बात है। इरेनियस ने कहा, यीशु वापस आएगा जब मसीह की देह का अंतिम चुना हुआ सदस्य अंदर आता है। ये इरेनियस था, लगभग 400 वर्षों बाद मसीह की मृत्यु के पश्चात। उसने कहा, जब ये अंतिम युग आता है, ये प्रीनिसियन काउंसिल में है। आप लोग जो यहाँ हैं, जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, मेरा अर्थ बाइबल का इतिहास पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि प्रीनिसियन सभा में, मैं सोचता हूँ ये पहली या दूसरी पुस्तक में है, आप इसे पाएंगे। और अब उसने इसे वर्षों पहले देख लिया था, जो उसने कहा, इस अंतिम चुने हुए को जो चुना गया है। लोग सोचते हैं कि चुनाव कुछ ऐसा है जो बाद में यहाँ होता है। ओह, ये पुरानी शिक्षाओं में से एक है जो हमारे पास है, चुनाव और बुलाहट। और इस प्रकार इरेनियस निश्चय ही एक पवित्र शास्त्र का विद्यार्थी, जिसने सदा चुनाव में विश्वास किया, और इसलिए इरेनियस कलीसियाई दूतों में से एक है, जैसा कि हमने अध्ययन किया। हम विश्वास करते हैं, अब निसंदेह ये सारे भेद थे, ये सब यहाँ है, ठीक यहाँ पर छिपे हुए हैं इन मोहरों में, आप देखिए, और ये अंत के दिनों में प्रकट होने हैं। कैसे ये पौलुस के साथ आरंभ हुए, और इरेनियस और मार्टिन और आदि आदि आगे, और यहाँ इस अंत के युग में आए, और अब हम विश्वास कर रहे हैं, अब प्रभु हमारी कोशिश में आज रात्रि हमें आशीषित करेगा। अब हम पहली मोहर निश्चय ही मैं आनंदित हुआ, पहली मोहर, वो आशीषें जो उसके साथ मिली मुझे। और अब मैं आपको बहुत देर तक रोके रखना नहीं चाहता, परंतु आप देखिए, मैं फिर से जा रहा हूँ कुछ ही रात्रियों में, और इसके पूरा होने के बाद, और हमें एक प्रकार से थोड़ी देर के लिए कष्ट उठाना पड़ा, और मैं सराहना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि भाई जूनियर जैक्सन वहाँ खड़े हैं, मैंने सोचा मैंने भाई रुडेल को थोड़ी देर पहले देखा है यहीं कहीं, और वे भाई जो हमारी कलीसियाएं हैं जो वहाँ बाहर, और दूसरे, निश्चय ही हम उनकी सराहना करते हैं। और मैं भाई हूपर को देखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वे वहाँ दीवार के साथ खड़े हैं, यूटिका से हैं, वहाँ कलीसिया है, और हम निश्चय ही आपके इस अच्छे सहयोग के लिए इसमें आपकी सराहना करते हैं। अब बीती सांझ, जैसा कि हम सदा इन मोहरों पर शिक्षा देना पसंद करते हैं, हम इसे उसी प्रकार सिखाते हैं जैसे आप कलीसियाई कालों पर करते हैं। और जब हम कलीसियाई युग पर शिक्षा देना समाप्त करते हैं, पिछली बार जब मैंने यहाँ प्रचार मंच पर श्याम पट पर इसका रेखा चित्र खींचा, कितनों को याद है कि क्या घटित हुआ था? वो सीधा नीचे उतरकर आया और पीछे दीवार पर गया एक उजियाले में, और उसको स्वयं ही चित्रित किया ठीक वहाँ दीवार पर, हम सबके सामने, प्रभु का सरदूत यहाँ सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा हुआ। और अब वो वास्तव में कुछ अलौकिक भी कर रहा है, और इसलिए हम महान चीजों की आशा कर रहे हैं। हम नहीं जानते, आप उस महान आशा की प्रतीक्षा करना पसंद करते हैं, और नहीं जानते कि अब आगे क्या होने जा रहा है, आप जानते हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब परमेश्वर हमारे लिए कितना महान है और कितना अद्भुत, हम उसकी बहुत ही सराहना करते हैं। अब पहला और दूसरा पद मैं इसे थोड़ी भूमिका देने के लिए पढ़ूंगा, और फिर हम तीसरा और चौथा पढ़ेंगे दूसरी मोहर के लिए, और फिर पांचवा और छठवां पद तीसरी मोहर, और सातवां और आठवां, हर घुड़सवार पर दो पद। और अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि कैसे ये लोग इस पीले घोड़े पर, संभव है यहाँ ये आता है, जैसे जैसे ये बढ़ता है बदलता रहता है, और अब तब वो महान और अंतिम मोहर खुलनी है। यदि परमेश्वर ने चाहा, अगली रविवार रात्रि जब ये हुआ तो वहाँ केवल एक चीज घटित हुई, स्वर्ग में आधी घड़ी का सन्नाटा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। अब मैं तीसरा पद पढ़ूंगा। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ और देख। फिर एक और घोड़ा निकला, चौथा पद, जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, वे एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब एक भेद भरी बात, जब पशु ने यूहन्ना को बताया, आ और देख, और उसने नहीं देखा कि वो क्या था, उसने बस एक प्रतीक देखा, और वो प्रतीक कारण कि उसने कहा आ और देख, परंतु उसने एक प्रतीक देखा कि उसे उसने कलीसिया के लिए प्रतीकात्मक करना था, इस पर से कि वे उसे देखेंगे जब तक कि वो अंत के युग तक न आ जाए, और फिर मोहर खुलेगी। अब हर कोई इसे समझता है। अब देखिए, मोहरे खुलेंगी, और क्या आप इस दिन में जीवित रहने के लिए आनंदित नहीं? मित्रों, ये केवल उसे ही नहीं देखता, परंतु अब सदा याद रखें, पिछले रविवार की सुबह जहाँ की सारी चीजें सादगी पर आधारित थी, समझे, साधारण नम्र इस प्रकार से घटित होता है कि लोग इसके समीप से निकलते हैं और इसे जानते तक नहीं कि ये घटित हुआ। और याद रखें, हम किसी भी समय प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, और जब हम, मैंने एक वक्तव्य दिया कि मैं संभवतः उठा लिए जाना इसी प्रकार से होगा, ये हो जाएगा, और कोई भी इस विषय में कुछ भी नहीं जान पाएगा, ये ठीक उसी प्रकार से आएगा, समझे। और अक्सर, जरा पीछे बाइबल में जाएं और देखें ये कैसे घटित हुआ, वैसे ही, समझे, यहाँ तक कि जैसे महान बात, जैसे प्रभु यीशु आया, कोई इस विषय में नहीं जान पाया, उन्होंने सोचा कोई सनक गया है, कलीसिया उन्हें कहा बस एक हठधर्मी, हम, वो वास्तव में पागल है, कहा वो एक पागल है, हम जानते हैं कि तू पागल है, पागल का अर्थ अति उन्मत्त, हम जानते हैं कि तुझमें शैतान है और इसने तुझे पागल कर दिया है, और तू हमें सिखाने की कोशिश करता है, वहाँ तेरा अवैध जन्म हुआ, हम, तू व्यभिचार में जन्मा था, लोगों को हमारी तरह सिखाना चाहता है, याजक और आदि आदि, वो मंदिर, भाई ओ, उनके लिए ये अपमान था। जब यूहन्ना आया, उसके विषय में बातें की युगों से होते हुए, यशायाह से लेकर मलाकी तक, वे 1200 यानी 712 वर्ष उसने भविष्यवक्ताओं को आते देखा, हर कोई उसके आने की राह देख रहा था, किसी भी समय ये आशा कर रहा था, परंतु जिस प्रकार वो आया, उसने प्रचार किया और अपनी सेवा की और महिमा में चला गया, और यहाँ तक कि चेले भी ये नहीं जान सके, क्योंकि उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने कहा अब यदि मनुष्य का पुत्र यरूशलेम जा रहा है और ये सारी चीजें चढ़ाने के लिए, कहा तो फिर वचन क्यों कहता है कि एलिया पहले आएगा? यीशु ने कहा वो तो पहले ही आ चुका और तुम ये नहीं जान पाए, और उसने ठीक वही किया जो पवित्र शास्त्र ने कहा वो करेगा, और उन्होंने वही किया जो ठहराया गया था, समझे, और वे इसे न समझ सके। उसने कहा ये यूहन्ना था, और फिर ओ, उनकी इसके लिए आंखें खुल गईं। वे, और जब यहाँ तक कि अंत में सारी बातों के बाद उसने कर दिया था, और चिन्ह जो उसने उन्हें करके दिखाए, यहाँ तक कि उनसे पुकार के कहा, तुम में से कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है? अविश्वास, यदि मैंने वो नहीं किया जो वचन ने कहा कि मेरा कार्य स्थल करेगा, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो मुझे दिखाए कि मैंने कहाँ पाप किया, समझे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या होना चाहिए, और देखें कि आप इसका विश्वास करते हैं या नहीं, समझे। वो वापस पलटा होगा और कहा, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए था जब मैं आता हूँ, उन्होंने ये नहीं किया, देखिए, इसलिए वे इससे अच्छा जानते थे कि इसे उसी पर मर दें, परंतु उसने कहा, तुम में से कौन मुझ पर अविश्वास का दोष लगा सकता है, समझे, क्या मैंने वो नहीं किया जो ये था? यहाँ तक कि चेले साथ साथ चलते थे, उन्होंने ठोकर खाई, हम जानते हैं वचन कैसे आगे बढ़ते हैं, तब अंततः अंत में उन्होंने कहा, अब हम विश्वास करते हैं कि किसी को तुझे कुछ नहीं बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू सब कुछ जानता है। अब मैं उसका मुख देखना पसंद करूंगा, उसने उनको जरूर देखा होगा। अच्छा, तुम अब विश्वास करते हो, अंत में ये तुमने समझ लिया। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए था, संभव है उस समय तक। आप देखते हैं और परमेश्वर हर चीज ठीक से करता है। आप जानते हैं मैं इसके लिए आपसे प्रेम करता हूँ। परंतु अब हम अपने युग के लिए सोचते हैं, क्योंकि मैं अब इस पर बात कर रहा हूँ, हम इन मोहरों में बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। और अब याद रखें, मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना के लिए बहुत ही निवेदन मिल रहे हैं, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर समय, हर निवेदन के लिए जो मुझे मिलता है, और रुमालों और चीजों के लिए। यदि हम इन मोहरों को पूरा कर सके अंतिम मोहर तक, रविवार प्रातः हम, यदि ये प्रभु की इच्छा हुई तो हम यहाँ एक अच्छी पुराने तरह की चंगाई सभा करना चाहेंगे, जहाँ आप बीमारों के प्रार्थना के लिए सारी सुबह लेते हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि एक अनोखी चंगाई सभा होगी, समझे? मुझे इस प्रकार की अनुभूति हो रही है। आप देखिए, और इस प्रकार से अनोखी नहीं परंतु कुछ के लिए थोड़ी विचित्र होगी। देखिए मेरा क्या अर्थ है। अब परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है कि अपने भेदों को इस दिन में हम पर प्रकट किया है। अब हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। हम इसका विश्वास करते हैं, और याद रखें, भेद अंत के दिनों में प्रकट होने थे। और कैसे वो अपना वचन प्रकट करता है, अपने भेद, बाइबल ने कहा। क्या पढ़ना चाहेंगे जहां उसने ये कहा है? आइए हम निकालें और देखें कैसे वो अपने भेदों को प्रकट करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप आमोस को पढ़ें, आमोस की पुस्तक को निकालें, और मैं चाहता हूं कि आमोस का तीसरा अध्याय पढ़ें और सातवां पद, ठीक है, मैं छठवां पद भी पढ़ूंगा। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थर्राएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। अब अंत के दिनों में हम पर ये भविष्यवाणी की गई है कि एक भविष्यद्वक्ता उठ खड़ा होगा। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास सब प्रकार का है, और मैं ये अनुभव करता हूँ। आज रात्रि चारों ओर देखने के बाद मैं वहाँ बोल रहा हूँ जहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि मुझे समझें, और आप अनुभव करते हैं कि ये टेप संसार में छा जाएंगे। देखिए, लगभग सारा संसार। मैं आपसे नहीं चाहूंगा कि किसी भी से आप ये सोचें कि मैं किसी प्रकार से एलिया के वाद को आप में डालना चाह रहा हूं, उसका कंबल या कपड़ा और वे सारी बातें। हमारे पास ये बहुत सारी चीजें थी, परंतु आप जानते हैं कि सारी बातें मूल चीज जो आने वाली थी, आगे आगे चलने वाली थी, लोगों को दूर हटाने के लिए। क्या आपको मालूम हुआ हमारे बीच झूठे अगुए उठ खड़े हुए, झूठे मसीही, इसके पहले कि मसीह आए? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं, इस दिन के शिक्षक, वे बहुत अच्छे शिक्षक गैमलियल, जब इन लोगों को पीटे जाने के विषय में प्रश्न उठा और आदि आदि, उसने कहा उन्हें अकेला छोड़ दो, यदि ये परमेश्वर से है, क्यों तुम अपने आप को परमेश्वर से लड़ता हुआ पाओगे? परंतु यदि ये परमेश्वर का नहीं है, कहा अधिक समय नहीं हुआ, एक मनुष्य उठा और 400 लोगों को जंगल में ले गया और आदि आदि। हमारे पास वे बातें हैं। ये क्या था? वास्तविक चीज के आगे आगे चल रहा है ये जब आता है। अब देखिए, शैतान उन्हें उठाता है। इस व्यक्ति की चालाकी देखिए जिसके विषय में हम बातें कर रहे हैं, शैतान, जिसका खुलासा हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसे नंगा कर रहे हैं वचनों के द्वारा, आपको दिखाने के लिए कि वो कौन है। यही जो किया जाना है। आपको याद है, उसने अंदर घुसने का यत्न नहीं किया कि साम्यवादी हो जाए, शैतान ने नहीं किया। वो एक मसीह विरोधी है, उसके बहुत समीप यीशु ने कहा चुनुओं को भरमा दे, और यही है जो उन मोहरों में छिपा हुआ है जिनके नाम पृथ्वी के रचने से पहले पुस्तक में हैं। ये चालाक जब वो इन चीजों को आते हुए देखता है कि आ रही हैं, तो वो हर चीज से वार करता है जिससे कि वो कर सकता है कि इसे गड़बड़ कर दे इसके पहले कि वो आए। क्या आपको मालूम है कि झूठे मसीही उठ खड़े होंगे इन अंत के दिनों में? ये ठीक इसके पीछे पीछे आएगा, इस महान संदेश के बाद जो ये भाई बोलेगा, जो वास्तव में एलिया के आत्मा के अभिषेक में आएगा तुरंत ही, और वे इससे चूक जाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि ये मसीह है, परंतु वो कठोरता के साथ ना कहेगा, क्योंकि उसे यहुन्ना के समान आना है। यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में जब वो प्रचार करने निकला, उन्होंने उससे कहा क्या तू मसीह नहीं है, क्या तू वो नहीं है? उसने कहा मैं नहीं हूँ, मैं उसके जूते खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, परंतु मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना इतना निश्चित था कि वो पृथ्वी पर है, उसने कहा वो तुम्हारे बीच में है अब कहीं, परंतु उसे मालूम नहीं पड़ा जब तक उसने चिन्ह को उसके ऊपर उतरते नहीं देख लिया। तब जब उसने ज्योति को नीचे उतरते हुए देखा और पंडुकी के पंखों के समान फैल गई और उसके ऊपर चमकी, उसने कहा ये है वो, यही है वो। परंतु केवल यूहन्ना ही था जिसने उसे देखा। अब जानते हैं केवल यूहन्ना ही था जिसने आवाज सुनी, बाकी सब वहाँ पर थे, किसी ने नहीं सुना। परंतु तब जब सच्चा दास आता है उसकी हर नकल के साथ कि लोगों के विचारों को उथल पुथल कर दे, ये शैतान करता है, और वे जो सही और गलत को पता नहीं कर सकते वे ठोकर खाते हैं, परंतु चुने हुए ये नहीं करेंगे। बाइबल ने कहा वो चुने हुए को बहकाने योग्य नहीं होगा। और अब मसीह के आगमन के जरा पहले बाइबल ने कहा झूठे मसीही उठ खड़े होंगे और मसीह होने का दावा करेंगे और कहेंगे देखो लोग कहते हैं वो रेगिस्तान में है, इसका विश्वास मत करना, देखो वो छुपे हुए स्थान में है, इसका विश्वास मत करना, क्योंकि जैसे सूरज पूरब से पश्चिम को चमकता है ऐसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा, समझे? जी हाँ, वो प्रकट होगा और ये विश्वव्यापी चीज होगी। और अब ये होगा वो निसंदेह, अब उन्हें मालूम पड़ता है कि वो कुछ घटित हुआ है, आप देखते हैं और वे होंगे। अब याद रखें ये कलीसिया के तुरंत घर चले जाने के बाद घटित होगा, रैप्चर के बाद। अब वहाँ पर झूठी नकल होगी सारे समय, और हमारा अर्थ किसी के साथ संबंध रखने का नहीं, इस प्रकार की चीज के साथ नहीं, नहीं श्रीमान। और मैं विश्वास करता हूँ जब वो व्यक्ति आता है यही वो है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई है। मैं ये केवल वचनों से दिखा रहा हूँ कि व्यक्ति को भविष्यवक्ता ही होना है, निश्चय ही वो होगा। और परमेश्वर का प्रकाशन, क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु का वचन उसके नबियों के पास आता है, ये बिल्कुल ठीक बात है ये। और आप देखिए परमेश्वर बदल नहीं सकता, यदि उसके पास इससे अच्छी विधि होती तो उसने उसका उपयोग किया होता, परंतु उसने आरंभ में सबसे अच्छी विधि चुन ली। जैसा कि वो सुसमाचार सुनाने के लिए सूरज को चुन सकता था, वो चांद को चुन सकता था, वो वायु को चुन सकता था, परंतु उसने पुरुष को चुना, उसने कभी झुंडों को नहीं चुना, व्यक्तिगत को, समझे? एक ही समय में कभी भी दो भविष्यवक्ता पृथ्वी पर नहीं रहे। देखिए हर व्यक्ति अलग है, उसकी बनावट भिन्न है। यदि परमेश्वर एक व्यक्ति को ले सके बस इतना ही उसे चाहिए, ठीक उसके हाथ में वो जो चाहे कर सकता है, उसे बस एक ही चाहिए। नूह के दिनों में, एलिया के दिनों में, मूसा के दिनों में, मूसा के समय में बहुत से उठ खड़े हुए, आप जानते हैं उन्होंने क्या किया और कहना चाहा, भाई इस झुंड में केवल तू ही पवित्र नहीं है, और दातान और कोरा, और परमेश्वर ने कहा बस अपने आप को अलग कर ले, मैं पृथ्वी को खोल दूंगा और उन्हें सटक लेगी, आप समझे? और इस प्रकार से, और तब लोग शिकायत करने लगे, उसने कहा मैं सारी चीजों को दूर हटा दूंगा, और मूसा ने मसीह का स्थान लिया, तब उसने अपने आप को बिचवई में डाल दिया और कहता है प्रभु ये ना कर, समझे? और निसंदेह वो मूसा को इस चीज के लिए अभिषित करने के बाद वो मूसा से आगे न बढ़ा, क्योंकि उस समय वो मसीह का व्यवहार कर रहा था, वो मसीह मूसा में था पूरी रीति से। अब आज हम बहुत ही आनंदित हैं कि परमेश्वर स्वयं को हम पर प्रकट कर रहा है, और मैं विश्वास करता हूं कि महान दिन की भोर होने को है, उजियाले चमकने आरंभ हो रहे हैं, स्वर्ग लोक की चिड़ियाओं ने संतों के हृदय में गाना आरंभ कर दिया है, वे जानते हैं कि अब और देर नहीं है, कुछ घटित होने वाला है, होने को है। इसलिए यदि वो कुछ नहीं करता, अब सारा वचन प्रेरणा से है, वचनों को पूरी रीति से सत्य होना चाहिए, इसको छोड़ कोई और मार्ग नहीं है। यही जहां मैं अपने मित्रों से सहमत नहीं, कैथोलिक कलीसिया से, मैं विश्वास करता हूं कि ये किसी साधारण मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है, मैं विश्वास करता हूं ये पवित्र आत्मा के उभारे जाने से, और ये सारी छोटी चीजें जो मिलाई गई, इसमें मिलाने का यत्न करते हैं, क्या आपने ध्यान दिया? इसे सुलझाने में उनमें से प्रत्येक बाहर हो गया, और ये वास्तविक सच्चे वचन एक दूसरे में समायोजित हैं, यहाँ तक कि इनमें कोई विरोधाभास नहीं, कहीं भी नहीं। मुझे एक भी साहित्य का हिस्सा दिखाएं जो सकता है, जो एक पद लिख सकता है कठिनता से अपने में विरोधाभास, या लिखे एक पद या लिखे या दो, और बाइबल अपने में ही कहीं भी विरोधाभास नहीं। मैंने पूरी आलोचनाएं पढ़ी हैं जो कहती हैं परंतु मैंने इसके लिए प्रस्ताव दिया था लंबे समय से कि मुझे दिखाएं कि ये कहाँ है, ये यहाँ नहीं है। ये बस इस कारण है क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क अस्त व्यस्त है, परमेश्वर अस्पष्ट नहीं है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो जानता है। देखिए, यदि परमेश्वर जगत का न्याय कलीसिया के द्वारा करने जा रहा है, जैसे कि ये कैथोलिक कलीसिया कहती है, ठीक है, तो फिर वो कौन सी कलीसिया है? उन कलीसियाओं को देखें जो हमारे पास हैं। हमारे पास 900 कुछ विभिन्न संस्थागत कलीसियाएं हैं। अब कैसे एक ऐसे सिखाता है, एक वैसे सिखाता है, कितनी उलझन है। तब कोई भी चीज जो वो चाहता है करता है। आप जैसे भी आगे बढ़ें, परमेश्वर का कोई मापदंड होना चाहिए और वो उसका वचन है। बोलते हुए न कि कैथोलिकों पर संकेत करते हुए, अब क्योंकि प्रोटेस्टेंट भी वैसे ही खराब हैं, परंतु एक पादरी से बात करते हुए उसने कहा, श्रीमान ब्रैनम, उसने कहा, परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा, श्रीमान, परमेश्वर अपने वचन में है और वो वचन है। जी हाँ श्रीमान। उसने कहा, भाई वो अपने कलीसिया अचूक है। मैंने कहा, वो ये नहीं कहता, परंतु उसने कहा है वचन अचूक है। उसने कहा, हम बपतिस्मा इसी प्रकार सिखाया करते थे और आदि आदि। मैंने कहा, कब? बोला, शुरू के दिनों में। मैंने कहा, क्या आप इसे कैथोलिक कलीसिया में होने के लिए अनुमति देंगे? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तो फिर मैं पुराने तरह का कैथोलिक हूँ, मैं पुराने तरह के होने के में विश्वास करता हूँ। आज तुम लोग सब चीजों में गड़बड़ हो गए हो और मुश्किल से जो पवित्र वचन में है सिखाते हो, स्त्रियों और मरे हुए लोगों से मध्यस्थता करते हो और सारी दूसरी चीजें, और ओह प्रभु, मांस मत खाओ, ओह, मैं नहीं जानता, वो सब देखा। मैंने कहा, आप वचन में मुझे ये सब ढूंढ कर दिखाएं। उसने कहा, ये वहाँ नहीं होगा, जहाँ तक कि कलीसिया ये कहती है यही है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये क्या कहता है, ये कलीसिया है। मैंने कहा कि बाइबल ने ये कहा है कि कोई भी इसमें एक शब्द मिलाएगा या इसमें से एक निकालेगा, उसका भाग जीवन की पुस्तक में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ये वचन है, मैं वचन का विश्वास करता हूँ। अब और तब यदि आमोस कहता है और दूसरे वचन इसके साथ चलते हैं कि यदि, और आपको इस पर याद है कि हम इसकी विशेष बातों पर ध्यान कर रहे हैं, बस मेरा, यदि जब मैं वहाँ कमरे में गया और वो अभिषेक अंदर आया, यदि मैं इसे लिख सकूँ वो क्या, ये सब क्या चल रहा है, तो मैं इन मोहरों में से एक पर 3 महीने के लिए होता। इसलिए बस उन स्थानों पर जोर दिया और जाने दिया, क्योंकि ये ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों की सांस रोक देगा, परंतु अभी ये उन्हें अधिक आघात नहीं पहुंचाएगा, परंतु इस प्रकार से विश्वास करते हुए ये बातों को अनुभव भी बना देगा। आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। अब इस पर ध्यान दें, यदि परमेश्वर कुछ नहीं करता, आमोस ने कहा, जब तक कि वो अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट नहीं कर देता, और तब हम देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। यही होना चाहिए कि वो कुछ करने के लिए तैयार है जो अब वो प्रकट कर रहा है। परमेश्वर दृश्य पर आने के लिए तैयार है, मैं विश्वास करता हूँ, न्याय में वो कुछ करने के लिए तैयार है। और फिर एक बात निश्चय ही, एक बात प्रमाणित करती है कि हम अंत के दिनों में हैं, हम युग के अंत में हैं, लुदोकिया कलीसियाई युग। अब क्योंकि ये बातें अंत के दिनों में प्रकट होनी थी, अब जरा इस पर सोचें, हम इसे अंदर लेने का यत्न करें जो हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा हमें बताएगा। अब याद रखें, कुछ भी प्रकट नहीं होना है, परमेश्वर बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा जब तक कि वो अपने दासों पर प्रकट नहीं करता, भविष्यद्वक्ताओं पर। इसके पहले वो कुछ भी करे, वो प्रकट करता है, और जब वो प्रकट करता है, आप ये याद रख सकते हैं कि कुछ अपने मार्ग पे चला आता है कि ये प्रकट हो रहा है। और ये बातें जिस विषय में हम बातें कर रहे हैं, अंत के दिन में प्रकट होनी थी, अंतिम तुरही के थोड़ा सा पहले, अंतिम कलीसिया युग के अंतिम संदेश पर, ये ठीक बात है। अब यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं। आप, मैंने बीती रात्रि इसका 3 बार उल्लेख किया है, प्रकाशित वाक्य 10:1-7 देखिए, और 7वें दूत के संदेश देने के दिनों में परमेश्वर के भेद प्रकट होंगे और समाप्त हो जाएंगे, और वहाँ केवल एक ही चीज बचेगी। जब ये सात मोहर की पुस्तक खुली तब परमेश्वर के समस्त भेद क्यों, हमने बीते वर्षों में इसकी जांच परख की और वचन के अनुसार, तब हम इसे समझने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि ये दिन नहीं आता, क्योंकि ये छिपा हुआ था। हमने प्रतीक देखे जिनके द्वारा ये प्रतीकात्मक किया गया था, परंतु ये सही सही अंत के दिन तक प्रकट नहीं किया जा सका, समझे। अब तब हमें वहाँ होना चाहिए अंत के समय में। अब स्मरण रखें, नहीं अब भूले नहीं कि जब तक वो ये प्रकट नहीं करता वो कुछ नहीं करता। और ये भी ना भूलें कि वो इतनी सादगी में करता है कि बुद्धिमान और समझदार इसमें चूक जाते हैं। अब यदि आप इस पर निशान लगाना चाहते हैं तो ये मती 11:25-26 है। और याद रखें, जब तक वो प्रकट ना कर दे वो इसे कुछ नहीं करता, और वो इसे इस प्रकार से प्रकट करता है कि चतुर पढ़े लिखे लोग इसमें चूक जाते हैं। याद रखें, ये बुद्धि थी जिसकी संसार ने इच्छा की बजाय कि परमेश्वर के वचन के। जब पहला पाप हुआ इसने क्या किया, अब इसे ना भूलें। ओ हमें कितना आभारी होना चाहिए ये सोचते हुए। अब बस उन चीजों को देखें जो घटित होती हैं, उन चीजों को देखें जो उसने हमें बताई। यहाँ इस आराधनालय को देखें, आप लोग जो यहाँ इसके साथ बड़े हुए हैं। अब मैं टेप के लिए पूछने जा रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ें, इसे टेप करें। परंतु देखिए, मैं बस ये आराधनालय के लोगों से कहने जा रहा हूँ, आप जो यहाँ रहे हैं, मैं आप में से किसी को भी अधिकार देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि कभी भी अपनी उंगली वहाँ उस पर रखें, वो सैकड़ों बातें जो आपको बताई गईं इसके पहले कि वो घटित होती, और कहें कि वे बातें घटित नहीं हुई। मुझे एक बार भी बताएं जो वहाँ मंच पर, वो चाहे जो था, उसने कभी भी जो बोला कुछ भी वो सिद्ध नहीं था। बिल्कुल वैसे ही कैसे, क्या मनुष्य का मस्तिष्क इस प्रकार का हो सकता है, निश्चय ही नहीं। 33 वर्षों पहले जब वो वहाँ नदी पर प्रकट हुआ, इस आने वाले जून में हो गए ज्योति के रूप में। आप पुराने लोग, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था जब से मैं छोटा लड़का था, वो आवाज और वो ज्योति, लोगों ने सोचा दिमाग से थोड़ा हटा हुआ है। निसंदेह मैं भी ऐसा सोचता हूँगा, वही चीज जो किसी ने ये कहा। परंतु आपको इसमें आश्चर्य नहीं है, और कलीसिया को भी नहीं, 1933 से नहीं। उस दिन नदी पर जहां मैं सैकड़ों लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, मुझे याद है उस मारा लड़के ने जो मुझसे कहा, बिली तुम आज उन लोगों को बतख बनाने जा रहे हो। वो छोटा जिम मारा गया यहां पर, मैं सोचता हूं कि अब वो मर गया। मैं सोचता हूँ वो मर गया, किसी स्त्री ने उसे गोली मार दी। परंतु उसने मुझसे पूछा, तुम वहाँ नीचे उन लोगों को बतख बनाने जा रहे हो। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं उन लोगों को हमारे प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा देने जा रहा हूँ। और वहाँ एक महिला उस झुंड में थी, उसने दूसरी महिला से कहा, उसने कहा इस विषय में कुछ टिप्पणी करी। वो बोली, भाई मुझे भी बतख होने में कोई परेशानी नहीं है। कहा, ये ठीक है, मुझे चिंता नहीं। मैंने कहा, वापस जाओ और प्रायश्चित करो, आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के लिए सही नहीं है, समझे। ये ऐसा कोई खेल नहीं है, ये मसीह का सुसमाचार है, एक प्राधिकार के द्वारा प्रकट किया गया है वचन। इसी समय यदि आप इसे निरर्थक और मूर्खता कह रहे हैं, आपने इसे कहीं और स्थान दिया है। ये वचन में प्रतिज्ञा दी हुई है कि ये घटित होगा, और ये ठीक वही होगा, और ये यहाँ पर है। तब उस दिन वहाँ पर, जब वे नदी पर वहाँ खड़े हुए थे, और परमेश्वर का वो स्वर्गदूत, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो एक सितारे जैसा कुछ दिखाई पड़ा, या कुछ दूर से कुछ, फिर ये पास आ गया और आपको बताया कि कैसे पन्ने के रंग की ज्योति दिखी, और वो वहाँ सीधी नदी पर आ गई जहाँ मैं बपतिस्मा दे रहा था। जब वहाँ नगर में एक व्यापारी ने कहा, इसका क्या अर्थ है, मैंने कहा ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए था, मैं विश्वास करता हूँ, समझे। यह आपके लिए था कि परमेश्वर ने ये किया कि आप ये जान जाएं कि मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। एक छोटा लड़का होने के नाते और लगभग 21 वर्ष का था, वे इसका विश्वास नहीं करेंगे। आप देखिए, क्योंकि एक बालक के हिसाब से बड़ी बात है। और तब मैं सोच रहा था, यहाँ भाई रॉबर्टसन है, हमारा एक ट्रस्टी, मैंने कुछ मिनटों पहले उसे यहाँ देखा था। उस दिन वो मुझे हॉस्टन की बात बता रहा था जब तस्वीर ली गई थी कि आप देखिए, और मैं था उस बहस में। मैंने इस विषय में कुछ बताना आरंभ किया था उस रात्रि। भाई रॉय ही केवल और एक व्यक्ति के साथ और केवल वही एक व्यक्ति झुंड में था जिसने रिकॉर्ड किया था। ये एक पुराने ढंग का तार वाला रिकॉर्डर था। अब मैं भाई रॉबर्टसन और उनकी पत्नी को देखता हूँ इसलिए, और ये श्रीमती रॉबर्टसन बीमार थी। भाई रॉय एक अनुभवी थे और उनकी टांग उड़ गई थी और उन्होंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो सेना में एक ऑफिसर था और एक जर्मनी की 88 ने टैंक पर मार की थी जिसमें कि वो था, और इसने बस व्यक्ति को मार डाला था और उसके चिथड़े उड़ा दिए थे। उन्होंने उसे लंबे समय के लिए बाहर डाल दिया कि मर जाए, और उन्होंने कहा कि ये कभी नहीं चलेगा क्योंकि दोनों टांगें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और उनमें की नसें और आदि आदि, और वो मुझसे तेज चल सकता है। परंतु ये क्या था? वहाँ कुछ था जो उसने देखा, और वो वहाँ हॉस्टल में गया और वो मुझे अपनी पत्नी के विषय में बता रहा था, और उसके पास तार था और वो उसे टेप में लगा रहा था, और सभाओं के समाप्त हो जाने के बाद भाई वो उसे बजाने जा रहा था आप सबके लिए। मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पुराना तार वाला टेप था, उसने मेरी सभाएं हॉस्टल में करवाई थी। और फिर उसकी पत्नी, उसने कहा वहाँ पर वो पहुँच गई, और उस दिन तक उसने ध्यान नहीं दिया। वो थी वो बहुत उदास थी, वो बीमार थी, और वो प्रार्थना पंक्ति में आना चाहती थी। वे मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे और मैंने उन्हें कभी भी अपने जीवन में नहीं देखा। इस प्रकार उस दिन वो खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी और बहुत उदास थी, आप समझते हैं, और परेशान, और चाहती थी कि उसे प्रार्थना पत्र मिल सके कि पंक्ति में आ जाए। और कुछ ऐसा हुआ कि वो पंक्ति में आ गई, या दूसरी रात्रि में, या कुछ ऐसे ही, मैं विश्वास करता हूँ उसी रात, और वो लाइन में आ गई। और जब वो मंच पर आई, पवित्र आत्मा ने उसे बताया, कहा अब आप यहाँ से नहीं है, आप एक नगर जो न्यू एल्बनी कहलाता है वहाँ से हैं, और कहा आज आप एक खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी और सारी चिंता ये थी कि प्रार्थना पत्र मिले, ये वहाँ टेप पर है वर्षों पहले। और जब सभा के आरंभ में जब पवित्र आत्मा वहाँ पर था, वो पहली सभा थी, और हमारे यहाँ लगभग 3,000 लोग थे, फिर हम 8,000 पर पहुँच गए, और फिर लगभग 30,000 पर पहुँच गए। इस प्रकार से फिर जबकि मैं वहाँ बोल रहा था, सबसे पहले वाली सभा में मैंने कहा मैं नहीं जानता कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अब ये टेप पर है, परंतु ये हम लोग, ये मेरे समय की प्रमुख घटना होने जा रही है, इन सभाओं के चलते कुछ घटित होने जा रहा है, ये अभी तक जो किसी ने देखा उससे बड़ा होने जा रहा है। और ये लगभग 8 या 9-10 रात्रियों के बाद जब प्रभु का स्वर्गदूत लगभग 30,000 लोगों के सामने प्रकट हुआ और नीचे उतर आया और चित्र लिया गया था, यही है ठीक अब जो वॉशिंगटन DC में प्रकाशनाधिकार है, केवल अलौकिक जीवन के समान जिसका कभी संसार में चित्र लिया गया। तब आप जानते हैं, मैंने विचार के परखने में कभी कभी इस विषय में बातें की, कहा एक व्यक्ति पर मृत्यु की छाया है, वहाँ छाया की एक काली टोपी है, वे मरने के लिए तैयार हैं। और यहाँ ईस्ट पाइन या साउथ पाइन में मैं विश्वास करता हूँ, ये जब मैं वहाँ अंतिम सभा में था, एक छोटी महिला वहाँ बैठी थी, उसे किसी चीज ने बताया चित्र उतारने में जल्दी करो, जब मैं एक महिला से बोल रहा था, और ये वहाँ था। मैं सोचता हूँ ये सूचना पट पर होगा, थोड़े समय के लिए रहा था, वहाँ वो काली टोपी उस स्त्री के ऊपर थी, उसने दूसरा चित्र उतारा, जैसी पवित्र आत्मा ने ये घोषणा की वो चला गया था, कहा आप चंगी होने जा रही हैं, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, कैंसर चला गया है, और ये वहाँ था और वो चंगी हो गई थी, समझे, आप वही हैं, समझे। ये दिखाने जा रहा है कि परमेश्वर जानता है ये दिन का कौन सा समय है, हम नहीं, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना ही है। अब हम बातें करते रह सकते हैं, परंतु अब आइए हम यहाँ नीचे आएं एक मिनट और इस पीछे की मोहर को लें, इसलिए इसे हम इसके साथ मिला सकते हैं। अब जरा सा पुराना अवलोकन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, वो वाली पहली मोहर, पहली मोहर टूटने में हम ध्यान देते हैं, शैतान के पास एक बहुत बड़ा धार्मिक मनुष्य है। क्या आपने ध्यान दिया कि वो सफेद घुड़सवार, जो कि उन्होंने ये सोचा था कि ये वो होना था, कि आरंभिक कलीसियाएं आगे बढ़ रही हैं, परंतु ओ प्रभु ये वर्षों तक यही सोचा जाता रहा, परंतु ये नहीं हो सकता था। आप बस ध्यान दें, जबकि वे बाकी सारे, जब हम उन सब को एक साथ मिलाते हैं तब देखिए ये कहाँ पर है, देखा? और जब मैं नहीं जानता वो बाकी क्या होने जा रहे हैं जैसा अभी है, परंतु मैं जानता हूँ ये बिल्कुल सिद्धता में वहाँ आना है, क्योंकि ये सत्य है, ये सत्य है। यही जो रोम की कलीसिया का पुरोहितवाद है, बिल्कुल सही। ये लोग जो सोचते हैं कि यहूदी मसीह विरोधी हैं, वे लोग निश्चय ही रेखा से लाखों मील दूर हैं। आप ये कभी ना सोचें कि यहूदी मसीह विरोधी हैं। उनकी आंखें अंधी कर दी गई थीं उद्देश्य से, ताकि हमें अंदर आने का मार्ग मिल सके। हमें प्रायश्चित का समय दिया जा रहा है, परंतु अन्य जाति मसीह विरोधी है। निश्चय ही ये एक सत्य की नकल है, एंटी विरोधी। अब ये बड़ा मनुष्य, ओ ये कैसे एक बड़ा मनुष्य बन गया और फिर अंत में सिंहासन पर बैठ गया था, और सिंहासन पर बैठने के बाद उसे ताज पहनाया गया था, और अब वो इसके बाद परमेश्वर के बदले उसकी आराधना की गई। अब देखिए, इसके पहले कि वो कभी आता, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो कौन था? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 में पौलुस के ऊपर वो ये क्या था जिसने कहा कि वो मनुष्य आएगा, वो मनुष्य युगों से होते हुए क्यों नम्र बना रहा और उसे देखता है? वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, निश्चय ही। क्यों था? उसने कहा आत्मा प्रकट में कहता है कि अंत के समयों में कि वे विश्वास से हट जाएंगे और बहकाने वाले की ओर ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि बहकाना क्या होता है? एक बहकाने वाले आत्मा कलीसिया में, वो पुरोहित वर्ग। बहकाने वाला पुरोहित वर्ग की आत्मा, शैतानों के कार्य कलीसिया में, ढोंगबाजी, ढीठ, घमंडी, बुद्धि, आप देखिए तेज, चतुर, भक्ति का भेष भरते हैं। जरा जाकर कहें, भाई हम लोग मसीही हैं, हमें आराधना ले जाना चाहिए। भक्ति का भेष भरते हैं, परंतु प्रकाशन का सामर्थ और आत्मा के कार्यों का इनकार करते हैं। ऐसों से अलग हो जा, समझे? अब ध्यान दें, उसने कहा क्योंकि इस प्रकार के जो घर घर जाएंगे और मूर्ख स्त्रियों की अगुवाई करेंगे, इसका अर्थ पवित्र आत्मा वाली स्त्रियों से नहीं है। मूर्ख स्त्रियां जो विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं के अनुसार चलती हैं, विभिन्न अभिलाषाएं जो हर छोटी छोटी चीजों में शामिल होना चाहती हैं, जिसमें वो हो सकती हैं, और सब प्रकार के सामाजिक वर्ग, और वे जैसा भी चाहती हैं जी सकती हैं, और फिर भी हम आराधनालय जाते हैं, हम उतने ही अच्छे हैं जैसे और हैं। नाच, दावतें, अपने बाल कटाती, रंग जो चाहे वही वस्त्र धारण करती हैं, फिर भी हम लोग तो पेंतिकॉस्टल हैं, हम उतने ही अच्छे हैं जैसे कोई और है। ओ, आपके अपने काम आपको प्रमाणित करते हैं, सच है। ध्यान दें, परंतु उसने कहा सत्य के विषय निकम्मे मन। सत्य क्या है? वचन, जो कि मसीह है, सत्य के विषय में। ओ, आप बनते हैं, आप स्त्रियों को दूर करने वाले, आप स्त्रियों से घृणा करने वाले, आप ये वो करते हैं। नहीं श्रीमान, ये ठीक बात नहीं है, ये गलती है। मैं स्त्रियों से घृणा नहीं करता, नहीं श्रीमान, वो मेरी बहने हैं यदि वे बहने हैं। परंतु बात यह है, प्रेम सुधारात्मक होता है, यदि ये सुधारता नहीं तो ये प्रेम नहीं है, यदि ये है तो ये प्रेम है, ये शारीरिक है, प्रेम है, न कि ईश्वरीय प्रेम। मैं आपको ये बताऊंगा, उनके अंदर सुंदर दिखने वाली स्त्रियों के लिए थोड़ा सा शारीरिक प्रेम है, परंतु ईश्वरीय प्रेम भिन्न चीज है। ये वो प्रेम है जो चीजों को ठीक करता है और कहीं जाकर परमेश्वर से मिलाता है कि हम अनंत में जी सकें। समझे? मेरा ये अर्थ नहीं है कि जो हो सकता है ऐसा सुनाई पड़ता है, परंतु मैं अब जानते हैं कि मैं क्या, मैं आशा करता हूँ कि आप समझते हैं, ठीक है? अब परंतु याद रखें, उसने कहा जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का सामना किया, ऐसे ही वे करेंगे, परंतु उनकी मूर्खता जल्द ही प्रकट हो जाएगी। क्यों? जब मूसा को कुछ करने के लिए प्राधिकार दिया तो वो अतिवादी सा प्रतीत हुआ, परंतु वो उतनी ईमानदारी से गया जितना वो जा सकता था, और परमेश्वर ने उसे वो छड़ी लेने के लिए बताया और उसे नीचे डाले और वो सांप में बदल जाएगी। तब उसने ये किया, वो दर्शाने को ये घटित करेगी और फिरौन के सामने वो वैसे ही खड़ा हुआ जैसा प्राधिकार उसे मिला था और अपनी छड़ी नीचे फेंकी और ये एक सर्प में बदल गई। और कोई संदेह नहीं, फिरौन ने कहा एक घटिया जादूगरी। इसलिए वो जाकर अपने यन्नेस और यम्रेस को ले आया, कहा हम भी यही चीज कर सकते हैं, और छड़ी को नीचे फेंका और वे सर्पों में बदल गईं। अब मूसा क्या कर सकता था? ये क्या था? ये इस बात को दर्शा रहा था कि हम मूल बात परमेश्वर की, शैतान के पास उसकी नकल है, उन्होंने नकल की ताकि परमेश्वर के लोगों को मार्ग से हटा दे। मूसा ने क्या किया? कहे भाई मुझे लगता है कि मैंने गलती की, अच्छा हो कि मैं वापस चला जाऊं। वो बस शांत खड़ा रहा क्योंकि वो अपने प्राधिकार को शब्द दर शब्द कर रहा था। तब पहली बात आप जानते हैं, मूसा के सांप ने दूसरे वालों को खा लिया, समझे? क्या आपने कभी सोचा दूसरे सांपों का क्या हुआ, वो कहां गए? मूसा ने लाठी उठाई और उसके साथ बाहर निकल गया। उसने इसके द्वारा आश्चर्य कर्म किए, वो सांप इसी दूसरी लाठी के अंदर थे, समझे? ये आश्चर्यजनक है, क्या नहीं? जी हाँ श्रीमान। अब मसीह विरोधी धीरे धीरे दृश्य में आता है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। अब आप जब सुनते हैं, अब मेरे कैथोलिक मित्रों बस एक मिनट शांत बैठे, और अब और फिर हम देखने जा रहे हैं कि प्रोटेस्टेंट कहाँ पर हैं, हम सब कहाँ पर हैं। देखिए, ध्यान दें, पहली कलीसिया, जबकि कैथोलिक कलीसिया कहती है कि वे पहले थे, असली कलीसिया, वे बिल्कुल ठीक हैं, वे थे, वे पेंतिकोस्त से आरंभ हुए, यही जहां कैथोलिक कलीसिया आरंभ हुई। अब एक समय मैंने मुश्किल से विश्वास किया जब तक कि मैंने इतिहास नहीं पढ़ लिया, और मैंने पाया कि ये सही बात है, वे पेंतिकोस्त से आरंभ हुए, परंतु वे मार्ग से हटने लगे। और आप देखिए कि वे कहां पर हैं, और पेंतिकोस्त जिस रफ्तार से मार्ग से हट रहे हैं अब, तो वे हजारों वर्ष तक कभी नहीं जाएंगे। अब से 100 वर्षों में वे कैथोलिक कलीसिया से भी अधिक दूर हो जाएंगे, ये ठीक बात है। परंतु ध्यान दें, अब ये सफेद घुड़सवार, हमने इसकी थोड़ी सी भूमिका दी है, जब तक इस मोहर पर ध्यान करें। अब ध्यान दें, ये सफेद घुड़सवार जब ये बाहर निकला, इसने 3 स्थितियों में कार्य किया। शैतान, जैसा कि मैंने उस रात सिद्ध किया त्रिएकता में, जैसे कि परमेश्वर, परंतु सारे समय यही शैतान है, इन 3 स्थितियों में। उसकी स्थितियों पर ध्यान दें जिसमें वो आता है। पवित्र आत्मा उतरा, उन लोगों की हर चीज सार्वजनिक थी, और परमेश्वर का आत्मा उन पर था, और चेले घर घर जाते, लोगों के साथ रोटी तोड़ते, और वहाँ महान चिन्ह और आश्चर्य कर्म होते। और फिर पहली बात आप जानते हैं, शैतान ने उनके बीच में घुसने के लिए बुड़बुड़ाना आरंभ किया। तब कुछ समय बाद ये बंद हुए, और देश के निर्धन जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वे विभिन्न स्थानों में गए, गवाहियां दी, उन्होंने अपने स्वामियों की गवाही दी। और कुछ समय बाद वहाँ सेनापति जैसे लोग आने लगे, और विभिन्न प्रकार के लोग, लोकप्रिय लोगों ने स्त्रियों के प्रति शिष्टाचार और आश्चर्य कर्म और चिन्ह देखने आरंभ किए जो इन पुरुषों ने किए, इसलिए उन्होंने मसीहत को स्वीकार कर लिया। भाई फिर आप देखते हैं, जब उसने मसीहत को अपना लिया और उस स्थान पर जाता है जहाँ उनकी सभा एक छोटे से पुराने अंधेरे गंदे कमरे में होती है, हाथ से तालियां बजाते हैं और चिल्लाते और अन्य भाषा में बोलते और संदेशों को प्राप्त करते हैं, क्यों? वो इसे कभी भी अपने प्रतिद्वंदी के पास नहीं ले जा सकता, या ये जो भी है अपने व्यापार में, ये इसका कभी भी विश्वास नहीं करेगा इस प्रकार से, निश्चय ही नहीं। इसलिए इसे संवारना था ताकि वे एक साथ जमा हो सकें और सोचना आरंभ करें, अब हम कुछ थोड़ा सा भिन्न बनाएंगे। और यीशु ने तुरंत ही पहली कलीसिया के बाद उसने उन्हें बताया, यहाँ प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में, मेरे पास तेरे विरुद्ध कुछ है इन निकोलाइयों के कामों के कारण। निको, जीतना, जनसाधारण, दूसरे शब्दों में बजाय कि हर एक हो, वे किसी एक को पवित्र व्यक्ति बनाना चाहते थे, वे किसी एक को एक प्रकार का बनाना चाहते थे, वे पागानवाद के नमूने पर बनना चाहते थे जहां से वे निकल कर आए थे, और अंत में उन्होंने ये कर लिया। अब ध्यान दें, पहले निकोलेटन बाइबल में निकोलेटन मसीह विरोधी कहलाए, क्योंकि ये मसीह और चेलों की मूल शिक्षा के विरोध में था। मैं इस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, वो एक महान व्यक्ति है, परंतु ये उसकी एक सभा में था यहाँ कुछ वर्षों पहले, और उसे मालूम था कि मैं वहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने उससे हाथ मिलाया था। और उसने कहा, ओ आप जानते हैं, ऐसे ही आज हमारे पास है जिन्हें वे पेंटिकॉस्टल कहते हैं, और उसने कहा वे प्रेरितों की पुस्तक पर भरोसा रखते हैं, और उसने कहा आप देखिए प्रेरितों के काम केवल कलीसिया के लिए फांसी का तख्ता थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक मनुष्य जिसने बाइबल का अध्ययन किया हो, एक बहादुर बूढ़ा मनुष्य बाइबल का अध्ययन किया हो जिस प्रकार से उसने किया, और फिर इस प्रकार की टिप्पणी करेगा? ये सुनने में लगता है कि नहीं, इतना भी सुनने में नहीं लगता कि पवित्र आत्मा जैसा हो। भाई ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण समझ से ये जानेगा कि प्रेरितों के कार्य नहीं थे, ये पवित्र आत्मा के कार्य चेलों में थे। क्या आप नहीं जानते कि हमने कलीसियाई कालों में कैसा नमूना लिया है? वे प्राणी वहाँ बैठे हैं, वहाँ वाचा के संदूक को देख रहे हैं, मती मरकुस लूका और यूहन्ना वहाँ खड़े उसे देख रहे हैं, और वहाँ पर क्या घटित हुआ? मती मरकुस लूका और यूहन्ना के लेखों के प्रमाण के समान, यही जो वृक्ष उत्पन्न कर रहा है अपनी पहली डाली और ये घटित हुआ। यदि वो वृक्ष कभी दूसरी डाली उगाएगा तो वे अपने पीछे दूसरी प्रेरितों की पुस्तक लिखेंगे, क्योंकि आप देखते हैं उन्हीं चीजों में वही जीवन होना चाहिए। इसलिए अब आज जब हम अपने नामधारी कलीसियाओं को देखते हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, चर्च ऑफ क्राइस्ट कहलाने वाला और पेंटिकॉस्टल आदि आदि, हम ये कहाँ पाते हैं? आप ये नहीं पाते। मैं ये स्वीकार करूंगा पेंटिकॉस्टल के पास समीप की बातें हैं, ये वहाँ है क्योंकि वे यहाँ पर हैं। लुदिकिया कलीसियाई युग में उनके पास सत्य था और अस्वीकार कर दिया, वे इसके साथ गुनगुने हो गए और परमेश्वर ने उन्हें अपने मुंह से थूक दिया। ये ठीक वचनों के अनुसार है, आप वचनों को झूठा नहीं बना सकते, समझे? वे तो सदा सत्य रहने वाले हैं। यत्न ना करें, केवल एक बात अपने विचारों को मिलाने का यत्न ना करें या वचनों को अपने विचारों से, परंतु अपने आप को वचनों के अनुसार कर लें। यही तब आप परमेश्वर के साथ दौड़ रहे हैं। कोई मतलब नहीं कि आपको कितना भी कटना पड़े या एक और होना पड़े, उसके साथ मिल जाएं। समझे? देखिए, इसने क्या किया जब ये पहली बार गिरा। भाई यदि परमेश्वर ने पहली बार ये कार्य किया तो उसे दूसरी बार भी वैसा ही करना पड़ेगा, हर बार उसे इसी प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा, या पहली बार उसने गलत किया। देखिए, हम मरणहार, हम गलती कर सकते हैं, परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर का पहला निर्णय सिद्ध होता है, और जिस प्रकार उसने चीजों को करने के लिए चुना, इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं हो सकता। वो इसे और अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आरंभ से ही सिद्ध है। यदि ये नहीं है तो फिर वो अनंत नहीं है, और यदि वो अनंत है तो फिर वो सर्वज्ञानी है, और वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान है, आमीन। उसे वही होना है कि परमेश्वर हो, समझे? इसलिए आप नहीं कह सकते अब उसने और सीख लिया, वो और नहीं सीखा, वो सारी बुद्धिमानी का सोता है, समझे? हमारी बुद्धि यहाँ शैतान से आती है, ये हमें अदन से उत्तराधिकार से मिली है, जहाँ हमने विश्वास को बुद्धि के लिए छोड़ दिया, हवा ने ये किया। अब वो पहले मसीह विरोधी कहलाया था, दूसरी अवस्था में वो झूठा भविष्यद्वक्ता कहलाया था, क्योंकि वो आत्मा लोगों के बीच में अवतरित हो गई थी। आपको याद है वो सफेद घुड़सवार के पास अब कोई ताज नहीं था जब उसने आरंभ किया, परंतु तब उसने चाहा ताज दिया गया था, क्यों? वो निकोलाई की आत्मा था आरंभ से ही, और फिर वो एक मनुष्य में अवतरित हो गया, और फिर उसे ताज पहनाया गया और एक सिंहासन प्राप्त किया, और ताज पहनाया गया था, और तब उसने लंबे समय तक सेवा की, जैसा कि हम देखेंगे, जैसा हम मोहरे टूटती हैं, और तब हम पाते हैं उस लंबे समय के बाद शैतान को स्वर्ग से लात मारकर बाहर किया गया, और वो नीचे आया वचनों के अनुसार, और स्वयं को सिंहासन पर विराजमान कर लिया। जरा सोचें, स्वयं को उस मनुष्य में विराजमान कर लिया और पशु हो गया, और उसके पास सामर्थ थी, सबसे बड़ी सामर्थ, जैसा कि उसने किया सारे आश्चर्य कर्म और सारी चीजें जो हत्याएं, खूनी संघर्ष और हर चीज जो रोम उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, उसने निर्दय होकर मारा, रोमी दंड, बस ओ कैसे हम इन वचनों में स्पष्ट करते हैं, याद रखें यीशु मसीह रोमी दंड की अधीनता में मारा गया, फांसी की सजा। वो संदेश जो मेरे पास मेरे हृदय में है कि इस अगली सभा में प्रचार करूं गुड फ्राइडे दोपहर बाद, तीन चार चीजें मिलती हैं। देखिए, वहाँ उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वहाँ सबसे पवित्र स्थान संसार में यरूशलम था। उन्होंने संसार के सबसे पवित्र लोग माने जाते हैं यहूदी, वहाँ उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया सबसे क्रूर दंड जो रोम उत्पन्न कर सकता था, उसे क्रूस पर चढ़ाया। क्या महानतम व्यक्ति जो कभी रहा, वहाँ उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। ओ प्रभु परमेश्वर, मेरी सहायता करे कि इसे व्यापारियों के झुंड में उतार दूं, जब तक कि वे इसे देख सकें कि वे कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अब अपने आप को भिन्न बनाने के लिए नहीं, न कि आशालीन होने को, परंतु झकझोरने को, जब तक कि वे भाई इस बात को देख सकें कि उनके सम्मानित व्यक्ति और होली फादर्स और चीजें वे जो इस व्यापारी लोगों के अखबार में लिख रहे हैं निरर्थक हैं। किसी मसीही को किसी मनुष्य को पिता नहीं कहना चाहिए। उन्होंने यह आरंभ किया, मैंने उनकी हर चीज में सहायता करने की कोशिश की जितनी कर सकता हूँ। आप देखिए ये टेप कहाँ जाते हैं, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। निश्चय ही मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहले मसीह को याद रखें। पहले निकोलाई, निकोलाइयों के युग ने किस चीज की मांग की? उन्होंने मांग की उन लोगों के झुंड से अलग रहें जो चिल्लाते और अपने हाथों से ताली बजाते और भद्दा सा दिखाई पड़ता है, जैसा उन्होंने पेंतिकोस्तल पर किया, पिए हुए लोगों जैसा व्यवहार किया, आत्मा में लड़खड़ाना और आदि आदि। उन्होंने इस प्रकार की चीजों को नहीं चाहा और उन्होंने कहा वे पिए हुए हैं। और जब वे प्रसिद्ध व्यक्ति, सुनिए इसमें चूके नहीं, यह आपको पागलों जैसा सुन पड़ेगा परंतु ये सत्य है, जब प्रसिद्ध लोग अंदर आने लगे वे इतना नीचे नहीं झुक सकते थे। परमेश्वर को क्या महान बनाता है, क्योंकि वो इतना महान है कि वो नीचे झुक गया। यही जो उसे महान बनाता है, वहाँ बड़ा कुछ नहीं, और वो इतना नीचे झुक गया कि कोई झुक सके, कोई भी मनुष्य कभी झुका हो। वो स्वर्ग का राजा था, वो पृथ्वी के सबसे नीचे नगर यरोही में आया और वो इतना नीचे झुका, यहाँ तक कि नगर का सबसे नाटा व्यक्ति ने उसे नीचे झुककर देखा कि उसे देखे। क्या ठीक बात है जकई? ये ठीक बात है। वो बुरे नाम से पुकारा गया जिससे किसी मनुष्य को बुलाया जा सकता है, एक जादूगर, एक शैतान, बालजबूब। संसार ने उसके लिए यही सोचा, सबसे क्रूर मृत्यु से मरा, सर रखने के लिए जगह नहीं, हर संस्था से बाहर निकाला हुआ। परंतु जब परमेश्वर ने उसे इतना ऊपर उठाया कि स्वर्ग को देखने के लिए उसे नीचे देखना पड़ा, देखिए कैसे परमेश्वर नम्रता में, समझे, और उसने उसे एक नाम दिया इतना महान कि स्वर्ग का सारा परिवार उसके नाम से और पृथ्वी का हर परिवार, सारी पृथ्वी, सारा परिवार यीशु के नाम का, सारे परिवार स्वर्ग में यीशु नाम का, और ऐसा नाम कि हर घुटना झुकेगा और हर जुबान उसका अंगीकार करेगी कि वही प्रभु है, चाहे यहाँ या नरक में। नरक इसके सामने झुकेगा, हर चीज इसके सामने झुकेगी, समझे। परंतु पहले वो दीन हुआ था, तब वो महान हो गया, समझे। परमेश्वर उसे ऊंचे पर, वो जो स्वयं को दीन करता परमेश्वर ऊंचा करता है, समझे। अब हम इस निकाऊ आत्मा पर ध्यान देते हैं जिसने बुद्धि और तेजी को चाहा, इसे तर्क करना पड़ा जैसे ये अदन में था। परमेश्वर के वचन के विरोध में बुद्धि द्वारा तर्क, और कलीसिया इसके लिए गिर गई। ये क्या था? अब आइए कहते हैं यहाँ इस कलीसिया को लेते हैं और लोगों के झुंड को, जैसा हम लोग हैं, यदि आप वास्तव में आत्मा से भरे लोग नहीं थे, और आइए हम तो कहें हमारे नगर के महापौर के विरुद्ध कुछ नहीं। मैं नहीं सोचता कि मैं उनको जानता हूँ, श्री बटरॉफ, क्या वो अभी महापौर हैं, श्री बटरॉफ? देखिए मैं नहीं, श्री बटरॉफ मेरे अच्छे मित्र हैं, देखिए। परंतु कहते हैं नगर के महापौर और सारी पुलिस बल और सारे मार्शल और वे सारे यहाँ पर आए, पहली बात आप जानते हैं, यदि उनके विचार में कोई छोटी चीज आती है और समिति से बात करना आरंभ करते हैं और आसपास के लोगों से और कहते हैं, अब आप जानते हैं क्या, ये भिन्न होना चाहिए। यदि आप आत्मा से भरे नहीं हैं और प्रचार मंच के पीछे एक वास्तविक आत्मा से भरा व्यक्ति है, पहली बात आप जानते हैं, उनके लिए खान पान का प्रबंध करना होगा। संभव है ये पीढ़ी नहीं, हो सकता है अगली पीढ़ी। और ये इस प्रकार से शुरू हुआ, समझे। वे कह रहे थे, इधर देखिए, ये तर्क संगत है, आप सुनेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति अंदर आता है जो ये कह सकता है, ये आराधनालय बहुत छोटा है, चलिए एक बड़ा आराधनालय बनाते हैं और यहाँ आपके लिए एक बनवा दूंगा, ये बहुत पैसों का होगा, $5,00,000 का ये उसमें लगाया जाएगा, मैं इन बातों को प्रसारण पर डाल दूंगा। जब वे ये करते हैं तब वो कुल्हाड़ी को तेज करते हैं, 10 में से 9 ऐसा होता है। आप जानते हैं उनमें से एक दयालु होता है, पहली बात आप जानते हैं, तब यदि वो करता है तो चीजों को अपनी सहूलियत के अनुसार चलाता है। आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि भाई जॉन डो इसके पीछे हैं, वो इस कलीसिया पर पैसा लगा रहा है, समझे। और फिर आप कोई लफंगा किसी मिशनरी से पाते हैं जो परमेश्वर के विषय में इतना ही जानता है जैसे अफ्रीका की जंगली जाति मिस्र के वीरों के विषय में, और वो वहाँ आएगा और वो उस व्यक्ति की खातिरदारी करेगा क्योंकि वो हर बार उसके लिए नई कार खरीद कर देता है कि वो चलाकर आसपास जाए और उसे वो खरीदवाता है। अब सही में ये ऐसे ही आरंभ हुआ, ठीक है, ध्यान दें, बुद्धि और सुंदरता। उन्होंने कहा, अब इधर देखिए, क्या ये केवल समझदारी नहीं, अब हमारी स्त्रियां, इससे क्या अंतर पड़ता है कि वो अपने बाल कैसे संवारती हैं? परंतु बाइबल कहती है इससे अंतर पड़ता है। बस जरा वो एक चीज को लें, उन सैकड़ों चीजों को छोड़कर, समझे, इससे अंतर पड़ता है। परमेश्वर कहता है इससे अंतर पड़ता है, इसलिए ये एक अंतर है। परंतु आप देखिए, यदि वे इसे आरंभ करते देते हैं और ट्रस्टी बोर्ड और डीकन लोग और सारी चीजें, पहली बात आप जानते हैं, तो पास्टर भीतर या बाहर होगा, बस यही है, ये लोग जिन्होंने इसे मत दिया है, ठीक है। अब ध्यान दें, वो आत्मा कार्रवाई करने लगता है और कलीसिया जिसके पास बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति उसमें हैं, बहुत बड़ी बातें और बहुत सारा पैसा आरंभ हो गया, जब तक कि थोड़े समय पश्चात उन्होंने इसे सुन लिया और इसके लिए गिर पड़े, शैतान की असभ्यता। और यही वो चीज जो हवा ने अदन वाटिका में किया। अब आप ये सुनते हैं, ये ठीक बात है। देखिए, स्वाभाविक स्त्री, आदम की दुल्हन, इसके पहले कि वो उसके पास उसकी पत्नी के समान आए, शैतान की योजना के लिए वचन के विरुद्ध गिर पड़े तर्क के द्वारा। इसके पहले आदम हवा के साथ रहा एक पत्नी के समान, शैतान ने उसे पीटा, ये ठीक बात है। आपने दुल्हन वृक्ष में सुना, मैंने प्रचार किया, वो इसकी बात करता है, ठीक है। अब ध्यान दें, हवा तर्क के लिए गिर पड़ी, अब वो शैतान ने इस पर तर्क करने का यत्न किया, उसने कहा, परंतु प्रभु ने कहा है, उसने कहा, ओ आप जानते हैं, परंतु प्रभु निश्चय ही नहीं करेगा, समझे। आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, क्यों, आप कुछ नहीं है सिवाय एक गूंगे बालक के, समझे, आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए। यदि ये शैतान नहीं है, ओ प्रभु, यदि ये वे आधुनिक नहीं है, देखिए, ओ वे बस एक पवित्र शोर करने वालों का झुंड है, उन पर कोई ध्यान ना दें, आप देखिए मत जाइए, समझे। अब स्वाभाविक पहली दुल्हन मनुष्य जाति की, इसके पहले कि उसका पति उसके पास आता, वो शैतान का झूठ सुनने के द्वारा अनुग्रह से गिर गई। परमेश्वर ने उसको अपने वचन के किले बंदी में रखा, यदि वो वचन के पीछे रुकी रहती तो वो कभी नहीं गिरती। अब ये स्वाभाविक में है, ध्यान दें, स्वाभाविक स्त्री। और श्राप क्या था, वास्तविक श्राप परमेश्वर के वचन के पीछे से बाहर आना। अब स्मरण रखें, उसने इसका 98% विश्वास किया, परंतु आपको बस एक चीज जानी देनी चाहिए, समझे, इसने इस सारे का विश्वास किया, ओ निश्चय ही, उसने ये कहा और शैतान मान लेगा कि ये ठीक था। यदि वो बस आपको कोने में घेर ले, बस वो यही चाहता है, समझे, आपको केवल ये करना है कि गोली को जरा इधर उधर घुमा दें और ये निशाने से चूक जाएगी, समझे, बस यही है। अब उसने इसका इतना विश्वास कर लिया, परंतु फिर भी चूक गई। अब और वे परिणाम, क्योंकि उसने वचन छोड़ दिया जरा से तर्क के कारण। भाई आप कहते हैं स्त्री के विषय में क्या है या क्यों आप ऐसी चीज के विषय में बात करना चाहते हैं सिवाय इन छोटी बातों को छोड़ क्या अंतर है चाहिए आरंभिक प्रमाण हो इससे कुछ तो है आप समझे इसे तो स्पष्ट करना ही है हमने इसे मान लिया है लगभग 7 कलीसियाई कालों से होते हुए परंतु घड़ी आ गई है जब परमेश्वर ये बोलता है और वो केवल ये बोलता ही नहीं परंतु वो ये दर्शाता है और ये प्रमाणित करता है और इसे सिद्ध करता है ये ठीक बात है यदि वो ये नहीं करता तो वो परमेश्वर नहीं है बस परमेश्वर अपने वचन के पीछे खड़ा होता है अब ध्यान दें अब शारीरिक स्त्री शारीरिक मृत्यु का कारण हुई क्योंकि उसने तर्क को सुना कि अपने आप को बुद्धिमान बना ले बजाय इसके कि वचन के पीछे रहे अपने को बुद्धिमान बना लिया और वही कर रही है जो परमेश्वर ने उसे बताया उसने बुद्धि को चाहा और बुद्धिमान हो गई और उसने तर्क को सुना और उसने समस्त मानव जाति को खो दिया समझे अब इस बार आत्मिक स्त्री मसीह की दुल्हन जो पेंतिकुस्त के दिन आरंभ हुई शुरू के चेलों की कलीसिया वही चीज नीसियन सभा में खो दी ली तुम जानते हो कि ये सही बात है नीसियन सभा में जब उसने अपना आत्मिक जन्म अधिकार बदल दिया कि कॉन्स्टेंटाइन का बड़ा आराधनालय ले और वे चीजें जो उन्हें वहाँ दी गई और उसने वचन का जन्म अधिकार रोमी धर्म सिद्धांतों के लिए बेच दिया अब कैथोलिकों के लिए कठोर है परंतु प्रोटेस्टेंटों ने भी वही चीज की यहाँ बाइबल में प्रतिनिधित्व है वेश्या की एक पुत्री के समान वेश्या की ये बिल्कुल ठीक है उनमें से प्रत्येक कोई बहाना नहीं है परंतु इसमें हमेशा थोड़े से बचे रहे साथ साथ जो दुल्हन बनते हैं ध्यान दें उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया इसके पहले कि उसका पति उसको पाता समझे विवाह से पहले उसने अपनी शुद्धता खो दी और अब आप यहाँ याद रखते हैं उसने कहा मैं रानी के समान बैठी हूँ मुझे किसी की आवश्यकता नहीं उस लुदिकीय युग में वहाँ मैं धनी हूँ और धनी हो गया हूँ और आदि आदि ओ सारा संसार मुझे देख रहा है मैं वो महान पवित्र कलीसिया हूँ और आदि आदि हम ऐसे हैं सारा युग और उसने कहा तू नहीं जानता कि तू नंगा अंधा अभागा नीच निर्धन और ये नहीं जानता ये स्थिति है अब यदि पवित्र आत्मा ने कहा अंत के दिनों में स्थिति इस प्रकार होगी ये इसी प्रकार है इसके आसपास कोई और विधि नहीं है ये इसी प्रकार है अब ध्यान दें अब जब उसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार खो दिया अपनी शुद्धता का अधिकार वचन का उसने क्या किया जब हवा ने ये किया उसने सारी सृष्टि को खो दिया उसकी अधीनता में सारी सृष्टि खो गई अब ध्यान दें अब जब कलीसिया ने ये किया कि धर्म सिद्धांतों को अपना लिया बजाय आत्मा और वचन के इसने सारी व्यवस्था को श्रापित कर दिया हर नामधारी व्यवस्था जो कभी थी या कभी होगी इससे श्रापित हो गई और गिर पड़ी क्योंकि कोई और दूसरा मार्ग नहीं है जब आप लोगों का झुंड समस्या के समाधान के लिए जुटाते हैं एक का मस्तिष्क इधर को दूसरे का उधर को और वे चीजों को एक साथ मिलाकर और इसे हिलाते हैं और जब ये निकल कर आता है तो आप वही जो आप पाते हैं उन्होंने ठीक यही नीसियन सभा में किया ठीक यही जो वे मेथोडिस्ट में प्रेस्बिटेरियन चर्च चर्च ऑफ क्राइस्ट और उन बाकियों में करते हैं और मनुष्य नहीं कोई मतलब नहीं परमेश्वर उस पर क्या प्रकट करता है आपको ये उसके परिचय पत्रों के अनुसार सिखाना है उनके मत अनुसार मतसार क्या कहता है या वे आपको लात मार कर बाहर कर देंगे अब मुझे ना बताएं मैं वहाँ रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ और ये ठीक वही जो घटित हुआ इसलिए सब कुछ श्रापित है कोई आश्चर्य नहीं दूत ने कहा मेरे लोगों उनमें से बाहर निकल कर आओ ताकि तुम उसके दुखों में भागी ना हो क्योंकि वो होने जा रही है वो श्रापित है क्योंकि वो परमेश्वर के श्राप से दुखी होने जा रही है उसका क्रोध उस पर है क्योंकि उसने अपनी शुद्धता के अधिकार को बेच दिया है समझे परंतु ओह प्रभु परंतु स्मरण रखें सारी स्थितियों को देखते हुए परंतु परमेश्वर ने फिर भी योएल 2:25 में प्रतिज्ञा दी है यदि आप इसे लिखना चाहते हैं अंत के दिनों में जब उसने कहा जो गाजाम टिड्डी ने छोड़ा हासिल ने खा लिया जो हासिल ने छोड़ा अरबे ने खा लिया अरबे ने क्या खा लिया आगे बढ़ते जाएं, कीड़े के बाद कीड़े आए और कलीसिया को खाते रहे जब तक के सिवाय ठूंठ के कुछ नहीं बचा था। ध्यान दें, जो रोमियों ने छोड़ा लूथरन ने खा लिया, जो लूथरन ने छोड़ा मेथोडिस्टों ने खा लिया, जो मेथोडिस्टों ने छोड़ा पेंटिकॉस्टलों ने खा लिया। देखिए, जब तक वो ठूंठ में ना बदल गई। और क्या आप जानते हैं, आप उन कीड़ों को लेते हैं, अरबे और हासिल और आदि आदि, और आप किताब तक उसका पीछा करते हैं और पाते हैं ये एक ही कीड़ा विभिन्न अवस्थाओं में है। अपने लक्ष्य को थामे रहें। ऐसी ही ये मोहरें, ये वही कीड़ा है। जब हम इसे लाएंगे तो आप इसे देखने जा रहे हैं, इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा। ये वही कीड़ा है जो सारे समय उन चारों कीड़ों में से चार यहाँ है, वे वहाँ हैं, वे वही चीज हैं, ये वही आत्मा है जो एक ने छोड़ा दूसरे ने खा लिया, और जो इसने छोड़ा दूसरे ने खा लिया, इस प्रकार से जब तक ठूंठ में ना बदल गया। परंतु योएल ने कहा, प्रभु कहता है मैं लौटा ले आऊंगा वो सब जो हासिल ने खा लिया था। ये क्या है, वो इसे कैसे करने जा रहा है? यदि ये आरंभ हो गया मसीह विरोधी, मसीह की शिक्षा के विरोध में होते हुए, जो वचन के स्थान पर धर्म सिद्धांत स्वीकार किए गए और सुधार के वर्षों में होते हुए इसमें गोता लगाया गया, जैसा कि बाइबल ने कहा, परंतु अंत के दिनों में शब्द देने पर प्रकाशित वाक्य 10:1-7 उसने कहा, परमेश्वर के भेद अंत के दिनों में समाप्त हो जाएंगे, सातवें दूत के शब्द देने के दिनों में। मलाकी 4 ने कहा कि वो ये करेगा, पृथ्वी पर बुरे दिन के आने से पहले एलिया नबी को भेजेगा, जब वो भट्टी के समान जलेगी। और वो लौटा ले आएगा और बालकों के विश्वास को पूर्वजों की ओर वापस लाएगा। वो मूल प्रेरिताई पेंटिकॉस्टल विश्वास की वापस लाने की प्रतिज्ञा दी हुई है। अब ये उतना ही स्पष्ट है जितना वचन कह सकता है। अब ये प्रतिज्ञा दी हुई है, और यदि हम अंत के दिनों में हैं, तो कुछ घटित होना है, समझे? और ये हो रहा है और हम इसे देख रहे हैं। ध्यान दें, शैतान की त्रिएकता, वही व्यक्ति आ रहा है, बस एक से दूसरे में अवतरित होता है। इसी प्रकार से कीड़ों ने किया, वे कीड़े एक से दूसरे में, ठीक वैसे निकोलाई, आत्मिक मसीह विरोधी, पोप, झूठा भविष्यद्वक्ता, पशु, स्वयं शैतान अवतरित, वो इसे नहीं कर सकता। अब आप इसे अपने मस्तिष्क में रखें, जब आप इसके पीछे पीछे चलते हैं, आप देखेंगे कि ये घुड़सवार सीधे सीधे इस पर आते हैं। देखिए, मैं यहाँ आपके सामने यहाँ चित्र रख रहा हूँ, यदि मैं इसे श्याम पट पर दर्शाता तो आप अच्छी तरह समझते। देखिए, मैं देख रहा हूँ। अब पहले आप ये याद रखें, पहली बात, वो एक मसीह विरोधी आत्मा है। यूहन्ना ने ऐसा कहा, छोटे बालको, मसीह विरोधी का आत्मा पहले ही अनज्ञाकारी बालकों में कार्य कर रहा है। देखिए, चीज आरंभ हो गई थी, और फिर ये अगली कलीसिया युग में एक प्रकार की कहावत हो गई, और अगली कलीसिया युग में ये एक शिक्षा थी, और अगली कलीसिया युग में उसे ताज पहना दिया गया। अब ये इतना स्पष्ट नहीं कि आप इसे कहीं भी पढ़ सकते थे, समझे? देखिए, वहाँ वो आता है। अब पहले वो मसीह विरोधी आत्मा कहलाया, क्योंकि ये वचन के विरोध में था। ठीक इस प्रकार से सारा मामला चला कि परमेश्वर के वचन से मुड़ रहे थे। न कि इसलिए कि हवा ने एक दिन केन को चांटा मारा होगा, समझे? ये नहीं किया गया था। पहली चीज जो की गई थी, सारी चीज परमेश्वर के वचन से घूम गई थी, वो वचन से मुड़ गई। और पहली चीज जो परमेश्वर की कलीसिया में आरंभ हुई, जीवते परमेश्वर की कलीसिया में व्यभिचार, मसीह की दुल्हन वो वचन से फिरकर और रोम के धर्म सिद्धांतों को बजाय परमेश्वर के वचन को ले लिया, हर संस्था का क्या हुआ? इसने ठीक वही चीज की। अब परंतु अंत के दिनों की प्रतिज्ञा दी गई, वो फिर से लौटा ले आने के लिए एक मार्ग निकालेगा। प्रभु का वचन पृथ्वी पर गिरेगा, जैसा उसने आरंभ में किया, और वो वापस लाएगा क्या जो शुरू किया गया वचन के विरोध में। और इस व्यक्ति को करना है, जब ये आता है परमेश्वर के आत्मा से अभिषेक, वो केवल बालकों का विश्वास वापस पूर्वजों पर लाता है, इस प्रकार से वो फेरता है और आप फिर उसी वचन को लेते हैं उसी स्थान पर जो यहाँ है, ये फिर से वही चीज करने जा रहा है। यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य जो मेरा है और वो जो मुझ में विश्वास करता है, वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। और जब उन्होंने उससे कुछ विशेष कार्य करने के लिए कहा, उसने कहा, मैं वही करता हूँ जो पिता मुझे दिखाता है, तब तक कुछ नहीं करता जब तक मैं पहले देख नहीं लेता। जो मैं पिता को करते देखता हूँ वो मैं भी करता हूँ। पिता कार्य करता है और फिर मैं यहाँ करता हूँ। समझे? क्या आप ये नहीं देखते? क्यों? ये एक अखबार पढ़ने के समान है। समझे? अब पहले तब वो एक मसीह विरोधी हो गया। अब वो केवल आत्मा में मसीह विरोधी नहीं हो सकता था। तब वो मसीह विरोधी हो गया और उस आत्मा ने एक मनुष्य को लिया, उसने वही चीजें सिखाई जो कि मसीह विरोधी आत्मा कर रही थी, और तब वो मसीह विरोधी आत्मा के लिए झूठा नबी हो गया। अब संस्था में उस मनुष्य के विषय में क्या है आपके अपने अनुसार? मैं नहीं जानता आप इस विषय में क्या सोचते हैं। ठीक है। और अंत में वो एक पशु हो गया। अब प्रतीक्षा करें, हम इसमें थोड़ी देर बाद जाएंगे। देखिए, ठीक है। अब जैसे शैतान की त्रियेकता इस प्रकार से रखी है, शैतान सारे समय, शैतान मसीह विरोधी की आत्मा, मसीह विरोधी आत्मा झूठे भविष्यवक्ता में अवतरित होती है और तब पशु बन जाता है। समझे? जब न कि एक प्रेत जो उस मसीह विरोधी में था, परंतु शैतान जब वो स्वयं ही लात खाकर बाहर आ गया, वो नीचे उस स्थान पर आता है जहाँ प्रेत आत्मा थी, तब शैतान एक मनुष्य में अवतरित होता है। ये इसे दोहराता रहता है। यही जो यहूदा स्कृति था, और उसने क्या किया? क्या वही एक व्यक्ति था जो मसीह के विरोध में थे? क्यों? वो खजांची था, उसके संग संग चला, निश्चय ठीक उसके साथ साथ चला, वहाँ जाकर प्रेत आत्माओं को निकाला और ठीक वैसे ही किया जो उन्होंने किया। और मसीह परमेश्वर का अवतरण था, परमेश्वर देह में अवतरित हुआ, इमैनुएल, और यहूदा नरक का पुत्र था और यीशु परमेश्वर का पुत्र था, अवतरित परमेश्वर, अवतरित शैतान। कुछ लोग उस समय में तीन क्रूसों को देखते हैं, वहाँ पर चार थी, तीन वहाँ गुलगोता में जो हम देखते हैं, वहाँ यीशु बीच में था, एक चोर उसके बाएं और एक चोर उसके दहने। और ध्यान दें, एक चोर ने दूसरे से कहा या यीशु से कहा, यदि, अब आप जानते हैं कि वो वचन है, परंतु यदि तू वचन है, क्या तू अपने को नहीं बचाएगा? इस विषय में तू कुछ नहीं करेगा? आज भी वही बात है। क्या आपने इस पुराने शैतान को आकर ये कहते सुना, यदि तुम दिव्य चंगाई में विश्वास करते हो, या किसी की आंख है, क्या आप उनकी आंख नहीं खोलेंगे? मुझे अंधा करो, मुझे अंधा करो। वही पुराना शैतान, समझे? क्रूस से नीचे उतरा, हम तेरा विश्वास करेंगे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दे। वही शैतान। आप वहाँ से चले गए। देखिए, नहीं, यीशु ने इसी प्रकार से किया। वो उनके लिए तमाशा करने वाला नहीं बना। उसके हाथ पर कपड़ा डाला, उसकी अनमोल आंखों पर। इस प्रकार से उन्होंने एक छड़ी ली और उसके सर के ऊपर मारी। कहा, हमें बता, यदि तू एक भविष्य रखता है तो अब हमें बता तुझे किसने मारा? और छड़ी दूसरे को पकड़ा दी। अब हमें बता तुझे किसने मारा? और हम तेरा विश्वास करेंगे कि तू भविष्य रखता है। उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला, वो बस वहाँ बैठा रहा। समझे? वो जो कर नहीं बनता, वो बस वही करता है जो पिता कहता है। आपने देखा? समझे? उन्हें आगे बढ़ने दो, उनका समय आ रहा है, चिंता न करें। जी हाँ श्रीमान। अब उन्होंने उसका कपड़ा छुआ और उन्हें किसी गुण का अनुभव नहीं हुआ, परंतु बेचारी गरीब स्त्री आवश्यकता में थी, बस उसका वस्त्र छुआ। उसने घूमकर कहा, मुझे किसने छुआ? ओ, ये क्या है, एक अलग प्रकार का छूना। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे छूते हैं। आप देखिए, देखिए आप क्या विश्वास करते हैं। अब आप देखिए, अब जैसा कि शैतान करने स्वयं को अवतरित कर लिया, अब मसीह विरोधी से झूठे भविष्यवक्ता में और यहूदियों के दिनों में मसीह विरोधी है, उस आरंभिक कलीसिया के बीच अंधियारे युगों में झूठा भविष्यवक्ता हो गया संसार के लिए, उसे वहाँ दुष्टता के प्याले के साथ। अब ये कलीसिया युग के लिए है। अब परंतु कलीसिया के घर चले जाने के बाद के युग में वो पशु बन जाता है, वो शैतान का अवतरण हो जाता है स्वयं में लाल अजगर। ओ प्रभु, क्या आप नहीं देख सकते कि मेरा क्या अर्थ है? तब वो अपने लोगों में अवतरित हो गया, उसके अपने लोग हैं जो उसकी सामर्थ के द्वारा बंधे हुए हैं। झूठे भविष्यवक्ता ने उन्हें इसके लिए भविष्यवाणी की है, उन्हें जबरदस्त भ्रम दिया है कि झूठ की प्रतीति करें और उसके द्वारा शापित ठहरें। वचन का इनकार कर रहे हैं भक्ति के भेष के साथ। परमेश्वर अपने स्थान में कार्य करता है, स्त्री तत्व में न्यायोचित पवित्रीकरण और स्वयं को अपने लोगों में अवतरित करना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ, वही चीज शैतान मसीह के बाद प्रतीक में। ओ शैतान स्वयं को अवतरित करता है। अब ध्यान दें, शैतान जब यीशु स्वयं को अपने लोगों में अवतरित करता है तो वो वही जीवन जो मसीह में था उस व्यक्ति में है। ये क्या करेगा यदि आपने दाखलता का जीवन निकाल लिया और इसे कद्दू की बेल में डाल दिया? ये अब और कद्दू नहीं उगाएगी, ये अंगूर उत्पन्न करेगी। क्या हो यदि आप आड़ू का जीवन निकाल लें और इसे नाशपाती के पेड़ में डाल दें? क्या ये नाशपाती उगाएगा? नहीं, आड़ू उगाएगा। जीवन बताता है ये क्या है, समझे? जब आप कहते हैं, लोगों को कहते सुना है कि उनके पास पवित्र आत्मा है और वचन का इनकार करते हैं, तो वहाँ कुछ गड़बड़ है। पवित्र आत्मा ने वचन लिखा है और यीशु ने ये कहा, यदि मनुष्य में मेरा आत्मा है तो वो मेरे कार्य करेगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं? आप इसे लिखना चाहते हैं? ये संत यूहन्ना 14:12। जी हाँ, ठीक है। वो जो मुझ में विश्वास करता है तो जिन कार्यों को मैं करता हूँ वो भी करेगा, यहाँ तक कि इनसे भी अधिक करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, समझे? तब वो उसे पवित्र और शुद्ध करता है ताकि परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। स्याही की बूंद वहाँ गिरती है और उसे खाई के पार ले जाती है, समझे? अब ध्यान दें, शैतान जब वह स्वयं को अपने लोगों में अवतरित करता है तब वे वो कार्य करते हैं जो उसने किए। क्या आप नहीं देखते उसने क्या किया? सीधा उस भोली स्त्री के पास आया कि उसे धोखा दे, और ये ही ठीक ये शैतान करते हैं। सीधे उन जगहों में जाते हैं और कहते हैं, एक छोटे पादरी ने आरंभ किया कहीं पर, अंदर आकर कहता है, ओ यदि आप इसके सदस्य हो जाएं, ओ ओ, वही शैतान कार्य करता है। अब ये सत्य है। और जब शैतान अपनी कलीसिया में अवतरित हो जाता है एक शैतान होने के लिए, तब वे जो करते हैं घात करना और हत्या और आदि आदि, क्योंकि शैतान हत्यारा है पहले स्थान पर, एक झूठा और एक, समझे? ठीक है। शैतान क्या करता है जब वो करता है, जब वो लोगों में अवतरित हो जाता है? चतुर होना उसका कर्तव्य है, वो चतुर है। आप बाइबल में ढूंढें और मुझे दिखाएं कहां परमेश्वर ने बुद्धिमान लोगों के साथ व्यवहार किया। इसे ढूंढें और देखें यदि ये ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान सदा शैतान से ग्रस्त होते हैं। ये बड़ी बात है, परंतु ये सत्य है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि वंश को लें हाबिल का केन से, और वे 14 पीढ़ियां उन्हें देखें और देखें कि किस ओर के लोग ज्यादा तेज थे और कौन से वाले नम्र थे। ओ यीशु ने ऐसे लोगों को क्यों नहीं चुना? उसने मछुआरों को लिया और लोग जो अपने नाम का हस्ताक्षर नहीं कर सके, उन्हें अपनी कलीसिया का अध्यक्ष बनाया। ये ठीक बात है। बुद्धि कुछ नहीं है, ये मसीह के विरोध में है। संसारिक बुद्धि मसीह के विरोध में है सदा। यीशु ने हमसे कभी नहीं कहा कि जाकर धर्म विद्यालय बनाओ, उसने ये कभी नहीं किया कि बाइबल के विद्यालय बनाएं। उसने कहा वचन प्रचार करो, सुसमाचार प्रचार करो, और फिर यदि उसने कहा ये चिन्ह जो विश्वास करते हैं उनके होंगे, देखिए आपके पास होना ही है। दूसरे शब्दों में उसने कहा जाओ जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रदर्शन करो सारे राष्ट्रों में। अब ध्यान दें, शैतान का कर्तव्य है कि परमेश्वर के वचन को बुद्धिमानों के तर्क के लिए दूषित करे। ओ प्रभु, ओ तब वो मूल वचन के अस्वीकार करने के द्वारा अपनी प्रजा को चिन्हित करता है। अब इसे क्या और मुझे आप थोड़ा सा कष्ट देने देंगे और इसे लें? ये मैं नहीं चाहता कि आप इस पर चुकें। मुझे आपको प्रतीक दिखाने दें ताकि आप सारे प्रतीक वचन में देख सकते हैं और सारी चीजें। आप नहीं सकते, आपको भ्रमित होकर नहीं जाना चाहिए। पुराने नियम में जब मनुष्य गुलामी के लिए बेच दिया जाता था तो हर 50 वर्ष बाद जुबली वर्ष आता था, 49 वर्ष और फिर जुबली का वर्ष। और जब गुलाम ये सुनता और वो स्वतंत्र होकर जाना चाहता तो कोई भी चीज उसे स्वतंत्र होकर जाने से नहीं रोक सकती थी। वो अपनी कुदाली फेंक सकता था और कहता इतना लंबा, घर वापस चला जाता, तुरई बज गई। ये ठीक बात है। परंतु यदि वो नहीं जाना चाहता और वो अपने स्वामी से संतुष्ट है, तब उसे मंदिर में ले जाया जाता और वे एक सुतारी लेते। अब जानते हैं सुतारी क्या है, और वे उसके कान को दबाते और उसके कान में छेद कर देते, और ये एक चिन्ह है कि वो अब कभी भी वापस नहीं जा सकता। क्या ये ठीक बात है? उसे अपने स्वामी की हर समय सेवा करनी होती। मैं चिंता नहीं करता कि जुबली की आवाज कितनी बार आती, जो भी होता, उसने पूरी रीति से अपने स्वतंत्रता जन्म के सिद्ध अधिकार को बेच दिया। और जब एक मनुष्य सुसमाचार के सत्य को अस्वीकार करता, तो शैतान उसे चिन्हित करता है। कहाँ? उसके कानों पर। वो उसे बहरा कर देता है ताकि वो सच्चाई को और ना सुन सके, और वो समाप्त हो गया। वो उसी झुंड के साथ टिका रहता है यदि वो सत्य को नहीं सुनेगा। नहीं, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, सत्य स्वतंत्र करता है। परमेश्वर अपनों को चिन्हित करता है जब वे आते हैं। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के वचन को उनके द्वारा प्रमाणित करके उन्हें चिन्हित करता है। ये बिल्कुल सही है। यूहन्ना 14:12। और दूसरी चीज आप लिखना चाहते हैं, मरकुस 16। यीशु ने कहा, ये चिन्ह जो विश्वास करते हैं उनके होंगे। अब आइए इसे एक मिनट के लिए लेते हैं। क्या वो मजाक कर रहा था? क्या उसका कोई अर्थ था? उसका अर्थ चेलों से था, जैसा कुछ मुझे बताते हैं। ध्यान दें, इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ें। जाओ सारे में, कहां? सारे संसार में इस सुसमाचार को प्रचार करो। क्या? हर प्राणी को? ये तो अभी एक तिहाई को नहीं मिला। सारे संसार और हर प्राणी पर ये चिन्ह प्रकट होंगे। जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया गया, वे जो विश्वास करेंगे ये चिन्ह प्रकट होंगे, न कि थोड़े से लोगों पर। जैसे कि एक व्यक्ति एक बार मुझे बता रहा था, परमेश्वर का चंगाई का वरदान केवल 12 चेलों को दिया था, और वहाँ बहुत से भाई लोग बैठे थे। जब वो ये कहने के लिए खड़ा हुआ, कुछ ही मिनटों में बहुत कुछ कह दिया। इसलिए अब ध्यान दें, सारे संसार में हर प्राणी ये चिन्ह प्रकट होंगे। शैतान का अविश्वास का चिन्ह ना लें। अब आज रात्रि ये आप पर लगाएगा, यदि वो ये कर सके। वो इस दीवार के सहारे आपको छेदेगा और आप बाहर जाएंगे और कहते हैं, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। आप घर जाकर इसका अध्ययन करें और फिर ईमानदार होकर और प्रार्थना करें, क्योंकि इस घड़ी में वचनानुसार हर चीज सिद्ध है। इस समय ये पवित्र घड़ी है, ये वर्षों से सिद्ध किया जा रहा है। इस पर सीधे आ जाएं, और ये घड़ी है, ये समय है। और जब आप उसे आपके कानों को ना छेदने दें, उसके अविश्वास का चिन्ह समझे, क्योंकि वो आरंभ से एक अविश्वासी था, उसने इसका संदेह किया। ठीक है, वो उसे लेने भी ना दें, उसे अपनी बुद्धिमानी से वचन को ना लेने दें और इसे घुमाए और इसे अपनी ही बुद्धि से दूषित करे। उस तर्क के सामर्थों में आप बस नम्र रहें और कहें, परमेश्वर ने ऐसा कहा है और कुल मिलाकर यही है। अब ये हमें देर होने वाली है, इसलिए अच्छा हो कि हम इसे यहीं रोक दें और आरंभ करें। अब आइए हम दूसरी मोहर पर चलें। जब घायल हुए मेमने ने इसे उठकर खोला, और दूसरी मोहर बछड़े समान पशु ने कहा, आ देख, मोहर का भेद क्या है। समझे? अब हम इसे लेते हैं, वो मेमना, याद रखें, उसे हर मोहर खोलनी है। और दूसरा पशु, यदि आपने औपचारिक तौर पर ध्यान दिया है कि हम कहां से होकर निकले हैं इन कलीसिया युगों के साथ, वही बातें। दूसरा, पहला एक सिंह था, अगला बछड़े के समान था, या बैल के, या कुछ, आप देखिए। और पशु ने कहा, आ देख। और जब मेमने ने मोहर खोली और तब देखने गया, और जब वो भीतर गया, क्या घटित हुआ? अब आइए देखिए कि उसने क्या पाया। आ देख, यहाँ एक भेद मोहरबंद है, ये यहाँ लगभग 2000 वर्षों से है। आइए देखें ये क्या है। अब हम पाते हैं जो उसने देखा, क्या? एक लाल घोड़ा आगे बढ़ता है। अब मेरी समझ में ये बड़ी तलवार जो उसके हाथ में थी। अब हमारे पास लगभग 3 चीजें देखने के लिए हैं अगले 15-20 मिनटों के लगभग। आइए पढ़ें और देखें कि वो यहाँ क्या कहता है। और वहाँ बाहर आता है, चौथा पद, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब यहाँ प्रतीक है और हम उन्हें ध्यान से देखना चाहते हैं, परंतु मेरी समझ से अब सबसे अच्छा जो मैं जानता हूँ, आप देखिए, यीशु ने यही चीज मत्ती 24 में भविष्यवाणी की है, समझे? उसने कहा, अब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा अफवाहें सुनोगे और लड़ाइयाँ और अफवाहें लड़ाइयाँ, और परंतु कहा, ये सब अभी नहीं है, देखिए अभी समय नहीं है। देखिए, उन्होंने यीशु से तीन प्रश्न पूछे, समझे, और उसने उनका उत्तर दिया इन तीन प्रश्नों का। यहाँ जहाँ हमारे बहुत से भाइयों ने इसे उलझा कर रखने का यत्न किया, वे एडवेंटिस्ट भाई उस बारे में सातवें दिन और आदि आदि वहाँ पीछे आए, उन पर जो बालकों को दूध पिलाती होंगी और सबत के दिन दरवाजे बंद रहेंगे और इस प्रकार की चीजें। ओ, ये तो प्रश्न से संबंधित भी नहीं है, देखिए बिल्कुल नहीं, समझे? वो जो उन्होंने पूछा उसका उत्तर दे रहा था, परंतु ये उसने अंत के दिनों पर लागू नहीं किया। उसने कहा, तुम सुनोगे, अब हम यहाँ एक चीज पर काम करेंगे, हम इसे अधिकारी से लेने की इन्हें कुछ रात्रियों में लेंगे। देखिए, उसने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे और आदि आदि, तब ये सब नहीं, देखिए, तब वे वापस जाएंगे, तब वे तुम्हें छुड़ा लेंगे और सब जो अभी सही नहीं है। परंतु जब वो समय पर आया, जब वो उनसे बातें करने जा रहा था उस विषय पर जो उन्होंने उससे पूछा, संसार का अंत, ये बातें कब होंगी, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर कब बाकी नाव छूटेगा, क्या चिन्ह होंगे और कब आगमन होगा, संसार का अंत, देखिए, उन्होंने उससे तीन बातें पूछी। तब जब वो इस पर आया, संसार का अंत, उसने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ों की कोपलें निकलते हुए देखते हो, अब आप जानते हैं कि समय द्वार पर है, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये पीढ़ी जाती न रहेगी जब तक कि ये पूरा ना हो जाए। कैसे अविश्वासी बिना अनुवाद के इसे उस पर रखना चाहते हैं, समझे? उसने कहा, ये पीढ़ी, न कि पीढ़ी जिनसे वो बात कर रहा था, पीढ़ी जो अंजीर के पेड़ों की कोपलों को निकलते देखेगी। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अब इसे देखिए जो कि ठीक आपके सामने है। अब इसराइल 2500 वर्षों से पहली बार एक राष्ट्र संसार का सबसे पुराना झंडा आज रात्रि यरूशलेम में लहरा रहा है। इसराइल अपने राष्ट्र में है। एक बार यहाँ एक भाई था जो मिशनरी बनना चाहता था, मिशनरी होकर यहूदियों के पास जाना चाहता था। मैंने कहा, आप एक आधे को पा सकते हैं। ओ, लोग सोचते हैं सारा राष्ट्र, नहीं श्रीमान, इसराइल का एक राष्ट्र के समान मत परिवर्तन हुआ, न कि एक व्यक्ति के समान। एक राष्ट्र एक ही दिन में उत्पन्न होगा, ये इसराइल है, सारा इसराइल बचा हुआ है, इसे याद रखें, पौलुस ने ऐसा कहा है, सारा इसराइल बचा हुआ है। अब ध्यान दें, सारा इसराइल, ये बिल्कुल ठीक बात है, अब इस पर ध्यान दें। परंतु उसने कहा, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखो और दूसरे सारे पेड़ों को कि अपनी कोपले निकाल रहे हैं। अब ध्यान दें, अब पिछले 2500 वर्षों से ऐसा समय कभी नहीं हुआ कि इसराइल कभी अपने देश में हुआ हो। हमारा एक छोटा सैन्य प्रदर्शन आधी रात्रि को 3 मिनट, आप जानते हैं, वहाँ एक रास्ते है, दाऊद का 6 कोने का सितारा लहरा रहा है और ये सारी चीजें। क्या कभी ऐसा समय हुआ कि नामधारियों में इस प्रकार की बेदारी पिछले कुछ वर्षों में हुई? अब जरा इसका अध्ययन करें, हम घर पर हैं। कब कभी नामधारी किसी मनुष्य की सेवकाई में फले फूले, जैसे बिली ग्राम के में मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और आदि आदि? कब कभी कोई ऐसा मनुष्य हुआ, अपने इतिहास में ढूंढो, जो कभी औपचारिक कलीसिया में गया और इससे पहले जिसके नाम का अंत HAM से होता है? आपसे पूछता हूँ, ABRAHAM। अब देखिए, अब्राम के नाम में 7 अक्षर हैं, ABRAHAM, परंतु हमारे भाई बिली ग्राम में 6 हैं, GRAHAM, न कि 7। यही जहां वो सेवा कर रहा है, स्वाभाविक कलीसिया, स्वाभाविक कलीसिया लूत था सादोम में, और जब ये व्यक्ति वहां नीचे गया और प्रचार किया और सुसमाचार के द्वारा उन्हें अंधा कर दिया, परंतु वहां एक था जो अब्राहम के साथ था, रुका रहा और अब्राहम ने उसे एलोहिम प्रभु कहा। अब जब अब्राहम ने तीन को आते देखा उसने कहा मेरे प्रभु। जब लूत ने दो को आते देखा उसने कहा मेरे प्रभु। यहाँ वो आपका अंतर है, देखिए यहाँ आपकी त्रिएकता कार्य करती है, समझे। यीशु ने कहा जैसा कि ये लूत के दिनों में था। आप ये देखते हैं, ध्यान दें, इसे गिने। अब यहाँ एक था जो आत्मिक कलीसिया के पास आया, दुल्हन अब्राहम, जो आरंभ से ही सदोम में नहीं था। और ध्यान दें, उसने क्या किया, उसने कभी भी वैसा प्रचार नहीं किया जैसा उन्होंने किया। उसने उन्हें सिखाया, परंतु फिर उन्होंने उनके सामने चिन्ह दिखाए, उसने मसीह का चिन्ह दिखाया। उसने अपनी पीठ तंबू की ओर फेरी और उसने कहा अब्राहम। अब उसका वास्तविक नाम याद रखें, कुछ दिनों पहले वो अब्राम था, परंतु वो अब्राहम कहता है, तेरी पत्नी सारा SARAH कहाँ है। कुछ दिनों पहले उसे सारे कहकर बुलाया गया। अब्राहम ने कहा वो तेरे पीछे तंबू में है। और उसने कहा अब्राहम मैं, यहाँ ये आपको व्यक्तिगत सर्वनाम फिर से है, मैं वाचा के अनुसार तेरे पास फिर से आने वाला हूँ जो मैंने तुझसे बांधी है। आप देखते हैं ये क्या है, समझे। एक मनुष्य जिसके कपड़ों पर धूल पड़ी है, बछड़े का मांस खा रहा है और गाय का दूध पी रहा है और मक्के की रोटी खा रहा है। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर एलोहिम देह में प्रकट हुआ, अंतिम दिन में प्रतिज्ञा दी कि फिर से स्वयं को देह में प्रकट करेगा। ध्यान दे, अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है, वो तेरे पीछे तंबू में है। कहा मैं तुझसे मिलने जा रहा हूँ। एक महिला निसंदेह 100 वर्ष की, वो एक प्रकार से अपने अंदर हंसी। अब वो वहाँ पीछे तंबू में है, पर्दे के पीछे तंबू में। उसने कहा मुझे एक बूढ़ी स्त्री, वर्षों से उनके बीच पति पत्नी के संबंध बंद हो गए थे, आप जानते हैं, क्योंकि वो 100 वर्ष की आयु का था और वो 90 की थी। बोली ये कभी नहीं होगा। और उसने कहा वो क्यों हंसी, उसकी पीठ तंबू की ओर कह रहा है वो क्यों हंसी, ये बातें कैसे हो सकती हैं? देखिए उसने उसे एक चिन्ह दिखाया। अब उसने ये प्रतिज्ञा की कि ये फिर से होगा अंत के समय में फिर से। और दो मनुष्य वहाँ नीचे चले गए और वचन प्रचार किया और उन्हें बताया कि वहाँ से बाहर आ जाएं, कि वो जगह जलाई जाने वाली है और आदि आदि। और ये हुआ और लूत बाहर निकला, स्वाभाविक कलीसिया पाप में और कीचड़ में, परंतु फिर भी अपने संस्थागत कार्य कर्मों से संघर्ष कर रही है। परंतु दुल्हन, वो एक पुरुष उनके पास कभी नहीं गया, केवल वो गया और दुल्हन के प्रतीक को बुलाया। अब हम अंत के दिनों में हैं, समझे। अब ध्यान दें, आप कहते हैं वहाँ परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। यीशु ने स्वयं कहा तुम मुझे कैसे दोषी ठहराते हो, कहा क्या ये तुम्हारी बाइबल में नहीं लिखा है, तुम्हारी व्यवस्था, कि वे भविष्यद्वक्ता जिनके पास परमेश्वर का वचन आया। यीशु ने कहा वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया क्योंकि वो सारी बातों में वचनानुसार था। उसने कहा अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन भविष्यद्वक्ताओं के पास आया और तुमने उन्हें ईश्वर कहा, क्योंकि उनके पास वचन आया, तो फिर तुम मुझे कैसे दोषी ठहराने जा रहे हो जब मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उनकी अपनी ही व्यवस्था ने उन्हें दिखा दिया, आप वही हैं, समझे। अब हम कहाँ हैं? हम अंत के समय में हैं। अब और ध्यान से सुने, अब हम पाते हैं कि वहाँ लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें होंगी, और अब हम पाते हैं कि अंजीर का पेड़ अपनी कोपले निकाल रहा है और दूसरे पेड़ अपनी कोपले निकाल रहे हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन और सारे अपनी अपनी कोपले निकाल रहे हैं। एक महान बेदारी चल रही है। अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर दुल्हन को अंतिम घड़ी के लिए जमा कर रहा है। ओह प्रभु, अब ध्यान दें, हम इस पर विचार करें कि यूहन्ना ने क्या देखा, इन बातों को छोड़ उसने क्या देखा। एक लाल घोड़ा और उसका सवार आगे बढ़ता है और उसे सामर्थ्य दी गई है कि बड़ी तलवार से वध करे। अब यहाँ मेरा इसका प्रकाशन है, ये फिर से शैतान है, ये फिर से शैतान है दूसरे रूप में। अब हम यहाँ ये जानते हैं कि मोहरों में संबंधित है, जैसा कि मैंने उस रात्रि कहा, और तुरैया ये ग्रह युद्ध से संबंधित है, लोगों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में। परंतु आप यहाँ ये पाते हैं कि इस मनुष्य के पास तलवार है, इसलिए ये कलीसिया से संबंधित है, राजनीतिक युद्ध से। अब आप ये नहीं सोच सकते, बस एक मिनट के लिए ध्यान दें, बस कुछ मिनटों के लिए। अब घोड़ों के रंग बदलने पर ध्यान दें, वही सवार, घोड़ों का रंग बदलना। और घोड़ा एक पशु है, और बाइबल में पशु सामर्थ्य के एक प्रतीक को दर्शाता है। वही तंत्र, दूसरे रंग, सामर्थ्य, निष्कपट श्वेत से लहू के लाल पर सवार है। देखा, अब इस पर ध्यान दें, वो कैसे आ रहा है। जब उसने पहले आरंभ किया, भाई वो बस एक छोटी सी शिक्षा थी उनके बीच में, जो कि निकोलाईवाद कहलाई। निसंदेह ये किसी को घात नहीं करेगा। यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो ये प्रकाशित वाक्य 2:6 है, वो किसी चीज को घात नहीं करेगा, वो बस एक शिक्षा है, एक आत्मा लोगों के बीच में। अब वो कुछ भी घात नहीं करेगा। वो इतना सीधा था, इस सफेद घोड़े पर सवार है। ठीक है, आप जानते हैं, हम महान समस्त संसार की कलीसिया को ले सकते हैं, हम इसे विश्वव्यापी कह सकते हैं, वे अब भी कहते हैं ठीक है, समझे। अब हम पा सकते हैं, और ये पूरी तरह से निष्कपट है, और ओ ये इतना सीधा है, ये तो बस लोगों का झुंड है, हम सब संगति के लिए इकट्ठा होंगे। देखिए, ये बहुत ही निष्कपट है, ये सफेद है, सफेद घोड़ा था, समझे। अब इसलिए ऊंचे पद के लोग, अच्छे वस्त्र पहनने वाले और पढ़े लिखे, आप जानते हैं, एक से पंखों की चिड़िया, आप जानते हैं, हम एक प्रकार से मिलकर, और वो निर्धन झुंड, क्यों, यदि वे इससे ठोकर खाते हैं तो फिर ठीक है, परंतु हम एक अच्छे वर्ग के लोग को अपनी कलीसिया में आने के लिए लेंगे। यदि हम लोग अपने को इनसे अलग कर सकें, हम महलों वाले, या इस प्रकार, आप जानते हैं, हम इस प्रकार की चीजें तय करेंगे, या विचित्र लोग जैसे कि वे हैं, और फिर हम विचित्र लोगों को नहीं ठहराएं, परंतु आप जानते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। इसलिए वास्तविक विश्वासी के लिए ये विचित्र है। अब परंतु नहीं तो, दूसरे शब्दों में, हम एक छोटा सा झुंड चाहते हैं, एक छोटा व्यवसायिक झुंड, जिसे हम अपना कह सकें। ये बस एक शिक्षा है, बहुत ही निष्कपट। भाइयों, क्यों, हम आप लोगों के विरोध में नहीं है, निश्चय ही नहीं, आप ठीक हैं, परंतु आप जानते हैं कि हम अनुभव करते हैं कि हमारे व्यापार और सब, हम अच्छे खाते पीते हैं, यदि हम अपनों में इकट्ठा हो सकें, समझे। और फिर अंततः ऐसा चलता चला गया, जब तक कि ये नहीं हो गया, जी हाँ श्रीमान, एक साथ इकट्ठा होना। परंतु जब ये भयानक धोखे वाली आत्मा, ओह लोगो, अवतरित हुई, ये अवतरित आत्मा, एक शिक्षा की आत्मा, मसीह के स्थान पर मनुष्य में अवतरित हो गई, इसकी आराधना होनी ही थी, तब मसीह के समान आराधना में बदल गई। दूसरे शब्दों में, वहाँ वेटिकन में, मैं वहाँ पर था, ये लिखा है विकेरियस फिलिदी, और ये रोमन के अंकों में लिखा है। अब आप उन रोमन अंकों के नीचे लाइन खींचे, और इसका अर्थ है परमेश्वर के पुत्र के बदले। दूसरे शब्दों में, वो एक प्रतिनिधि है, आप जानते हैं, प्रतिनिधि क्या है, किसी चीज का स्थान लेना, वो प्रतिनिधि है परमेश्वर के पुत्र के बदले में। और बाइबल ने कहा, और वो जिसके पास बुद्धि हो, पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि यह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। अब आप विकेरियस फिलिदी को लें, और रेखा खींचकर रोमन के अंक लिखें, वी के लिए 5 और आई के लिए 1, और जोड़ते चले जाएं, और देखिए कि आपको 666 नहीं मिलता। बाइबल ने कहा, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठा है, और परमेश्वर के समान आराधना की जाती है। जब वो छोटी शिक्षा अवतरित होती है, तो ये बदले में हो जाता है, परमेश्वर के पुत्र के बदले में, समझे। ओ प्रभु, कितनी भयानक धोखे वाली आत्मा। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो दूसरे थिस्सलुनीकियों 2:3 में है, और आप देख सकते हैं ये कहां पर है। और निसंदेह आपको याद है, शैतान सारी राजनीति शक्ति का अध्यक्ष है, हर राष्ट्र का, कितने ये बात जानते हैं, आप इसे लिखना चाहते हैं? मत्ती 4:8। शैतान यीशु को ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसे सारे जगत के राज्य दिखाए जो कभी थे या कभी होंगे एक ही क्षण में। व्यक्ति के विषय में बात करते हैं। उसने कहा, मैं ये तुम्हें दूंगा यदि तुम मेरी आराधना करोगे। और यीशु जानता था कि वो इन सब का वारिस होने जा रहा है। यही जो वो कहते हैं, क्यों तुम निर्धन पवित्र शोर करने वालों का झुंड, क्यों हमारे पास संसार है, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यही जो यीशु ने कहा, समझे। ध्यान दें, यीशु को मालूम था वो इन सब का अधिकारी होगा, इसलिए उसने कहा, शैतान तुम उससे दूर हो, ये लिखा है। फिर से पवित्र वचन पर वापस आया। आपने देखा, तू प्रभु की आराधना कर और केवल उसकी, समझे। अब जब वो प्रेत आत्माओं का प्रधान इस सर्वोच्च धार्मिक मनुष्य में अवतरित होता है, जैसा कि बाइबल भविष्यवाणी करती है, तब वो कलीसिया और राज्य को मिला लेता है, अपनी दोनों शक्तियों को साथ मिला देता है, समझे। जब मसीह विरोधी आत्मा आगे बढ़ी, ये एक आत्मा थी, तब ये क्या हो गई? तब ये, अब इसे मोहर पर ध्यान दें। जब आत्मा आगे बढ़ी, ये मसीह विरोधी थी, मसीह की शिक्षा के विरोध में, ठीक है। अगली चीज की, मसीह अपनी कलीसिया के लिए क्या करने आया? वो पाप के विरोध में था, ये वहाँ 100 वर्ष पहले, वहाँ पीछे, ये हमारे लिए नहीं, समझे। ये देखिए, एंटी विरोध में। तब ये, अब घुड़सवार बाहर आया, उसके पास कोई मुकुट नहीं था, परंतु उसे एक दिया गया, वो सफेद घोड़ा, उसके पास कमान है, तीर नहीं, समझे। इसलिए तब जब वो आगे बढ़ा, तब उसे थोड़े समय बाद एक मुकुट दिया गया, क्योंकि आप आत्मा के सिर पर मुकुट नहीं रख सकते, परंतु जब ये आत्मा अपने दूसरे कार्य में अवतरित होती है, अपने आयाम, अपने भेद, दूसरा कार्य, वो मुकुटधारी हो गया, झूठा भविष्यवक्ता, विरोध की आत्मा में कार्य करने को। अब हम उसे देखते हैं, और अब वो हो गया। जब ये ले लेता है, तब वो पहले ही शैतान का नियंत्रण, संसार की राजनीति की शक्ति, अब वो उस स्थान में आता है जब तक वो कलीसिया को विश्वव्यापी शक्ति बनाता है, धार्मिक शक्ति को ले रहा है। अब मेरे भाई, क्या आप नहीं समझते कि जब ये राष्ट्र प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में प्रकट होता है, ये छोटा पशु मेमने के समान उठता है और इसके 2 सींग हैं, नागरिक और पुरोहितवाद की शक्ति, परंतु उसने वही किया पशु ने उससे पहले किया। ये विचित्र है, अमेरिका का नंबर 13 है और एक स्त्री, ये विचित्र है। ये प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में प्रकट होता है। हमने झंडे के 13 पट्टियाँ, 13 सितारों से आरंभ किया, हर चीज 13, 13, 13, 13 है, नीचे तक हर चीज स्त्री, 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 नीचे तक, और अंत में ये स्त्री में समाप्त होता है। मेरा पूर्व अनुमान, इस पर एक स्त्री का नियंत्रण होगा, याद रखें, ये 30 वर्ष पहले था, मैंने ये कहा, और 7 बातें जिनकी मैंने भविष्यवाणी की, उनमें से 5 हो चुकी हैं। उनके पास एक पुरुष है जो उसे अंदर लाएगा, और आप उसे वोट देते हैं अपनी राजनीति के द्वारा, जी हाँ। ओ ठीक है, ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ है, आप वहाँ कठिनता से पहुँच सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं। अब ध्यान दें, मैं आपको और थोड़ी देर रोकना चाहता हूँ, यदि कल रात्रि मुझे आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिए, जब शैतान, अब क्या हर कोई इस बात का अनुभव करता है कि शैतान संसार की राजनीतिक शक्ति का नियंत्रण रखता है? उसने ऐसा कहा है, मत्ती का 4:4, आपको मिला 8वां पद, सारे राज्य उसके हैं। यही कारण है वे लड़ते, युद्ध, हत्या। अब स्मरण रखें, क्या ये अजीब नहीं, उन्होंने ये तलवार दी एक दूसरे का वध करें। ओ ओ प्रभु, अब ध्यान दें, अब जब उसने ये किया, उसने अभी तक पुरोहितवाद की शक्ति नहीं ली, परंतु उसने प्रेत आत्मा वाली झूठी शिक्षा आरंभ कर दी, और वो शिक्षा एक मत बन गया, और वो मत झूठे भविष्यवक्ता में अवतरित हो गया, और फिर वो सही स्थान में चला गया। अब वो कभी भी इज़राइल नहीं गया, वो रोम चला गया, नीसियन रोम।
And they elected a head bishop. Amen.
सभा हुई थी और उन्होंने एक प्रधान बिशप चुना और तब ये करने के द्वारा उन्होंने कलीसिया और राज्य को एक साथ मिला दिया। तब उसने अपना धनुष छोड़ दिया और अपने सफेद घोड़े पर से उतर गया और अपने लाल घोड़े पर चढ़ गया ताकि वो किसी का भी वध कर सके जो उसके साथ सहमत ना हो। यहाँ आपकी मोहर है, वही व्यक्ति। उसे वहाँ अनंतता में इसके साथ सवारी करते देखें, अपनी दोनों शक्तियों को एक साथ मिलाता है और वही चीज वे अब करने का यत्न कर रहे हैं, वही चीज आज। और अजीब बात हो सकता है आप ना समझते हो, परंतु आज लुईविल के बैप्टिस्ट झुंड से आपने रेडियो पर सुना है, एक वक्ता खड़ा हुआ और कितनों ने ये सुना है, ठीक है, देखा, ठीक है, आप यहाँ हैं। वे चाहते हैं और अब उन्होंने कलीसिया में पूछा कि हम वास्तव में नहीं ओ कि कैथोलिक कलीसिया में ना जुड़े, परंतु हम एक प्रकार की संगति उनके साथ संग करेंगे। और उसी समय के साथ ये लुईविल में होगा। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों पर मोहर खोल रहा है कि इसे दिखाए, ये ना करें। देखिए, वे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। याद रखें, कौवा और पंडुकी एक ही खंभे पर बैठे बसेरा कर रहे हैं उस नाव में, निश्चय ही, बस याद रखें। अब हम पाते हैं कि वो अपनी शक्ति को मिलाता है। तब जब वो राज्य और कलीसिया दोनों हो गया, गिरजे का पुरोहित, तब आप क्या करने जा रहे हैं? उसने अपना धर्म तैयार कर लिया और अब वो जो चाहे करे कर सकता है, और जो भी उससे सहमत ना हो उसे अधिकार है कि वे उसे मार डाले। ठीक यही उसने किया भी, और उसने ठीक यही किया, और उसने क्या, उसने उन सच्चे जीवित परमेश्वर के संतों के साथ किया जो वचन पर थे और उसके मत पर सहमत नहीं हुए, उसने उन्हें मार डाला। अब भाई ली वाइल और आप निशियन युग के और आरंभिक युग के शिक्षक, मैं नहीं जानता कि आपने ये पढ़ा है कि नहीं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप शुमकरण की ग्लोरियस रिफॉर्मेशन में पाएंगे और पाएंगे जब हिप्पो के संत अगस्तीन रोमन कलीसिया की अधीनता में पादरी बना। एक बार ऐसा सौभाग्य मिला था कि पवित्र आत्मा ने उस पर आने का यत्न किया और उसने इसका इनकार कर दिया, एक शिक्षक के समान। कितने ये जानते हैं? इसलिए उसने पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया। क्या ये ठीक है? आज की प्रोटेस्टेंट कलीसिया का प्रतीक जिसने पवित्र आत्मा को अस्वीकार कर दिया, वो वापस हिप्पो चला गया और ये वही था जिसने उस कागज पर हस्ताक्षर किए जिस पर ये लिखा था परमेश्वर की ओर से प्रकाशन। ये ठीक बात है, और परमेश्वर को प्रसन्न करना कि हर उस मनुष्य को मौत के घाट उतार दो जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के साथ विश्वास नहीं करता। अब सुनिए, अब मैं मेट्रोलॉजी का उल्लेख कर रहा हूँ। हिप्पो के संत अगस्तीन के समय से 1586 तक रोमन मेट्रोलॉजी पर रोमन कैथोलिक कलीसिया ने 6,80,00,000 प्रोटेस्टेंटों को मार डाला। क्या उसकी तलवार लाल थी? क्या वो लाल घोड़े पर था? ये क्या था? वही शक्ति, वही सवार। यहाँ वो मोहर है। वे स्वीकार करते हैं 6,80,00,000 शहीद हुए। इनको छोड़ जो इसके अलावा ओह दया हो। इन अंधकार के युगों में लाखों शेरों को खिला दिए गए और हर प्रकार से मार डाले गए क्योंकि उन्होंने कैथोलिक मतों के सामने अपने सिर नहीं झुकाए। आप ये जानते हैं। आपके पास कितना समय है? ठीक है, मैं कुछ पढ़ दूं? मेरे साथ निकालें, मैं आपको कुछ दिखा दूं। एक मिनट, हम इसका चित्रण करें। अभी अभी मेरे विचार में आया, हम केवल इसे पढ़ेंगे। आइए प्रकाशित वाक्य को निकालें। प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय, हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। ठीक है, अब जरा और ध्यान से सुने जैसा कि हम पढ़ते हैं। आप जिनके पास बाइबल है और निकाल लें, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं ताकि आप इसे निकाल लें। क्या आपको मिल गया ली? शुमकर का जहां से मैंने लिया है ग्लोरियस रिफॉर्म, ये सीधा सीधा रोम के शहीदों से लिया गया है वेटिकन में। ये सीधा संत पैट्रिक के लोगों के सताव के नीचे से है और फिर वे संत पैट्रिक को अपना संत बताते हैं। ओह, संत पैट्रिक भी मेरी ही जितना कैथोलिक था, और आप जानते हैं मैं कितना हूँ, समझे? उसने कलीसिया की शिक्षा से घृणा की, उसने पोप के पास जाने को मना कर दिया। जी हाँ श्रीमान, संत पैट्रिक, यहाँ तक कि क्यों, क्या आप कभी उत्तरी आयरलैंड गए हैं जहाँ पर उसका विद्यालय था? अब जानते हैं कि उसका नाम पैट्रिक नहीं था, कितने ये जानते हैं? उसका नाम सुकात था, ये ठीक बात है। अपनी छोटी बहन को खो दिया था, आपको याद है जब वे देखा? ठीक है, अब ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय। अब हर कोई अपना हृदय खोलने का यत्न करे, होने पाए अपवित्र आत्मा आपको सिखाए। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, अब आप देखिए यहाँ 7 कटोरे हैं। अब जानते हैं हम इन 7 में से होकर निकल रहे हैं, ये सब एक समय में घटित होते हैं, कष्टों के बाद, कलीसिया युगों के बाद, वैसे ही, क्योंकि ये सब एक पुस्तक में मोहरबंद है, हर चीज, और चीज बारी बारी घटित होती हैं, एक दूसरे में जाती और दूसरा और दूसरा, और वहाँ 2 आत्माएं काम कर रही हैं, परमेश्वर और शैतान, समझे। जिसके पास अंतिम 7 कटोरे थे और उसने मुझसे बातें की, कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब यहाँ देखिए, इधर वे पानियों, वेश्या, ये क्या है? ये एक स्त्री है, पुरुष नहीं हो सकता। स्त्री को कलीसिया के प्रतीक में दिखाया है बाइबल में, कलीसिया, क्यों? मसीह की दुल्हन और आदि। अब देखिए, ये स्त्री है कलीसिया। अब पानियों, इसका क्या अर्थ है? यहाँ ध्यान दे, यहाँ उसका 15वां पद पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियाँ और भाषाएं हैं। ये कलीसिया समस्त संसार पर राज्य कर रही थी, बहुत से पानियों पर बैठी थी, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, आत्मिक व्यभिचार, उसकी शिक्षा ले रहे हैं, निकालायों की शिक्षा, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाली हो गए थे। लड़के, आप इस पर मतवाले, झुंड की बातें करते हैं आप। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने एक स्त्री को देखा। और क्या आपको मालूम है कि कैथलिकों के अपने लेख ये स्वीकार करते हैं कि उनकी ये कलीसिया है? आप इसे कितने जानते हैं? ठीक, उनके अपने लेख, मेरे पास फैक्ट ऑफ आवर फेथ है जो ये कहलाता है। अब देखिए, ये किसी पादरी की थी, ठीक है, ठीक है। जब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे देखा। अब जरा ध्यान दें, वो प्रतीक जिसके 7 सिर, अब आप देखिए यहाँ जहाँ उसने कहा, और वे सर जो तूने देखे, 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है, रोम 7 पहाड़ों पर बसा है, देखा। अब इसमें कोई गलती नहीं है, देखिए 7 सिर और 10 सींग, आप जानते हैं 10 राज्य और आदि आदि। ये स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्धताओं से भरा हुआ था। ये मसीह विरोधी आत्मा, व्यभिचार, देखिए, शिक्षा, जो परमेश्वर के साथ व्यभिचार करते हैं, समझे। अब इसे एक दुल्हन होना चाहिए, देखिए, और व्यभिचार कर रही है, समझे, जैसा कि हवा ने किया, जैसा कि वहाँ कलीसिया ने किया, देखा। और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और कोई भी जानता है, बेबीलोन रोम है, वेश्याओं की माता और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की माता। 6वें पद को सुने, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया, वो ऐसी सुंदर चीज थी उन क्रूसों के साथ, और उसके पास हर चीज थी। संसार में वो कैसे संतों का लहू पीने से दोषी ठहर सकती है? इस बात ने उसे दुविधा में डाल दिया। अब वो उसे बताने जा रहा है। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है तुझे भेद बताता हूँ। अब ये मोहरों में से किसी एक के नीचे नहीं है, ये कुछ और है, देखा। और उसने कहा, वे 7 सिर और 10 सींग, जो पशु तूने देखा है, वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। कोई नेम नहीं है पोप, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देख कर की पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे, वहाँ चुने हुए हैं। कैसे आपका नाम कब जीवन की पुस्तक में लिखा गया? उस बेदारी में जिसमें आप उपस्थित थे? नहीं श्रीमान, संसार के रचने से, जब उन्होंने देखा पशु जो था, नहीं है और अब है। देखिए, पशु, एक मरेगा, दूसरा उसका स्थान लेगा, वो था, वो नहीं था, वो था, वो नहीं था, था वो नहीं था, और वो विनाश में पड़ेगी, इस प्रकार समझे। ठीक है, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, कितने जानते हैं नौ आत्मिक वरदान हैं, उनमें से एक ज्ञान है। ठीक है, सातों सिर सात पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। ओ, आपको ये ना समझने के लिए पूरी रीति से अंधा बहरा और गूंगा होना पड़ेगा, समझे। ठीक है, वे सात राजा हैं, पांच तो हो चुके और एक अभी है नीरो, और एक अब तक नहीं आया, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। आपको याद है उसने क्या किया, नगर को जलाकर मसीहों पर दोष लगा दिया और अपनी माँ को लट्ठे से बांधकर और घोड़े से सड़कों पर खिंचवाया। जब रोम जल रहा था बाजा बजाया। ठीक है, और जो पशु पहले था और अब नहीं है वो आप आठवां है। पागन रोम पापन रोम में बदल गया। अब अवतरण करने वाली मसीह विरोधी आत्मा अवतरित हो गई और ताज पहनाया गया। वो मुकुटधारी रोम का राजा था, शासन और कलीसिया दोनों में एक साथ। ओ भाई, देखिए ये इससे भरा पड़ा है, समझे। सातवां है और वो कितने समय तक रहता है, उन्होंने पद्धति को कभी नहीं बदला, विनाश में पड़ेगा। जो दस सिंह तूने देखे वे दस राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। आप देखिए, निसंदेह ये तानाशाह हैं, ये एक मन होंगे। अब इधर देखिए, ये साम्यवाद के विषय में बात नहीं कर रहा है, समझे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। और फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो दस सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, और वो वाचा तोड़ दी। पिछली रात्रि मैंने इस पर बात की थी, और उसे नंगी और लाचार कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। क्या आप नहीं जानते, बाइबल कहती है जल के जहाज के मालिकों और सब ने कहा हाय हाय, वो बड़ा नगर वो कैसी घड़ी भर में नाश हो गया, समझे। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दें। वो स्त्री जो तूने देखा वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। मुझे एक बताएं, रूस सब पर राज्य नहीं करता, हम सब पर राज्य नहीं करते, केवल एक ही राजा है जो सब पर हर नबूकदनेस्सर के लोहे के समान सारे पंजे में, ये रोम है। रोम राष्ट्र के समान नहीं करता, ये एक कलीसिया के समान करता है। हर राष्ट्र जो आकाश के नीचे है रोम के लिए है, कोई आश्चर्य नहीं। उन्होंने कहा इससे कौन लड़ सकता है, वो कह सकता है शांति, बस ये तय हो गया। हर कैथोलिक कहता है यही है, मत लड़ो, और वे नहीं लड़ते, बस यही बात है। कौन ऐसा योग्य है जो वो कर सकता है, कोई नहीं, ये ठीक बात है। इसलिए जिस आश्चर्य कर्म को वो करता है वे आश्चर्यचकित हैं। वो युद्ध रोक सकता है, उसे केवल ये करना है कि कहे रुक जाओ बस। परंतु क्या आप सोचते हैं कि वो ये करेगा, निश्चय ही नहीं। ध्यान दें, निश्चय ही ये दिखाता है उन्होंने एक दूसरे को मारना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को मारना चाहिए। पहले तो उसके कमान में तीर नहीं था, परंतु उसकी बड़ी तलवार ने किया। बाद में उसने मार काट की और सफेद घोड़े से लाल घोड़े में बदल गया। वैसे ही बिल्कुल सही शैतान अपनी तलवार के साथ। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा वे जो तलवार लेते हैं उसी से नष्ट होंगे, पलट कर ना लड़े, समझे। यीशु उस रात्रि जब उसने ये बताया ये कहा, और पतरस ने अपनी तलवार ली, देखा वैसे ही करता है, उसने किया, बस आगे बढ़ता है। अब याद रखें, उसके पास तलवार थी, वो तलवार हाथ में लिए आगे बढ़ रहा है, लाल घोड़े पर सवार है, पर वो व्यक्ति जो उससे सहमत नहीं उसके लहू में चलता जा रहा है। अब क्या आप ये समझते हैं, कितने समझते हैं कि अब वो मोहर क्या है। ठीक है, अब यीशु ने क्या कहा, वे जो तलवार लेते हैं तलवार के द्वारा नष्ट होंगे, क्या ये ठीक बात है। ठीक है, ठीक है, ये सवार और उसके सारे राज्य के लोग जो इस युग में होते हुए मार डाले गए, जिसने सारे शहीद संतों का लहू बहाया, यीशु मसीह की तलवार के द्वारा मारे जाएंगे जब वो आएगा। वे जो तलवार चलाते हैं तलवार के द्वारा मारे जाएंगे। उन्होंने मत सिद्धांतों और मसीह विरोधी तलवार ली और सच्चे उपासकों को मार डाला। इन सारे युगों में होते हुए करोड़ों को, और जब मसीह तलवार के साथ आता है, क्योंकि उसका वचन जो उसके मुख से निकलता है वो हर शत्रु को जो उसके सामने होगा मार डालेगा। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? शत्रु को मार डालो। आइए एक मिनट के लिए यहाँ प्रकाशित वाक्य में चलें। हम देखेंगे यदि हम ये कह रहे हैं या वचन ये कहता है या नहीं। प्रकाशित वाक्य 19:11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मैं देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वासी योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। ओ भाई देखिए, उसको उसके संतों द्वारा मुकुट पहनाया गया। आप देखिए, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। याद रखें, हम नहीं सकते, हम ये नहीं जानते। देखिए ये क्या है। और वो वस्त्र पहने था, आइए देखें, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है नहीं परंतु कहलाया परमेश्वर का वचन। क्योंकि वो और वचन एक ही है, समझे? अब ध्यान दें, न कि उसके नाम। ओ, उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाया। वो केवल एक नाम जानता है और कोई नाम नहीं है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। ये संतों की धार्मिकता है, समझे? अब ध्यान दें, यीशु ने क्या कहा? वो जो तलवार लेता है, ठीक है, लाल घोड़े का सवार या जहाँ से वो आ रही है, वो जो तलवार लेता है, आप उनमें से 6,80,00,000 को मार सकते हैं इन युगों में से होते हुए, तब से हो सकता है और अधिक। परंतु यीशु ने कहा वो जो तलवार लेता है उसी से नष्ट होगा। ध्यान दें, उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। इब्रानियों 4:4 में कहा परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से अधिक धारदार है, यहाँ तक कि हड्डियों के गूदे, और ये कौन करता है, वचन करता है, वो हृदय के विचारों को परखता है, ठीक है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वो लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एक ढोंगी के समान परमेश्वर के वचन के विरोध में, और क्योंकि वे सहमत नहीं होंगे, और ये बात शैतान ने रखी, राजनीतिक शक्ति जो उसके पास है और आत्मिक शक्तियां जो उसने एक साथ मिलाकर थामी हुई हैं, और कलीसिया हर राष्ट्र में प्रभावशाली बना दिया, और उसने करोड़ों करोड़ों उसके सफेद घोड़े से उतरकर अपने लाल घोड़े पर आने के बाद उसने अपनी तलवार ली और आगे बढ़ गया। परंतु परमेश्वर ने कहा उन्हीं चीजों के साथ जो उसने दूषित की या झूठी शिक्षा के साथ यत्न किया, वही वचन सामर्थ के साथ खड़ा होगा जो यीशु मसीह के मुंह से आ रहा है, और उसे घात करेगा और हर चीज जो उसके सामने है। आमीन। यहाँ दूसरी मोहर है, आप उससे प्रेम करते हैं? ओ प्रभु, ये यहोवा यूं कहता है परमेश्वर की महिमा हो। यदि ये सारे प्रकाशन और दर्शन और हर चीज ठीक बिंदु पर मेल खाते हैं, और कितने ये जानते हैं, अपने हाथ उठाएं, सैकड़ों, हर कोई यहाँ अपने हाथ उठाए हुए है, ये ठीक बात है। इसी प्रकार ये होगा, याद रखें, ये ऐसे ही है। ओ मित्र, उस चश्मे के पास आ जो लहू से भरा है, जो इमैनुएल की शिराओं से निकला, जहाँ पापी उसमें गोता मारते हैं, अपने कसूरों के दाग धोते हैं। उस पर विश्वास करते हुए आओ। यदि आपने कभी नहीं किया, कोई मौका ना लें। नहीं नहीं, यदि आपके जीवन में कुछ है मित्र, हम यहाँ हैं, कुछ घटित होने को है। मैं नहीं जानता क्यों, मैं नहीं जानता कब, मैं जानता हूँ कि क्या होने जा रहा है, परंतु मैं नहीं जानता ये कब होने वाला है, परंतु ये होना ही है क्योंकि वो इसे अब प्रकट कर रहा है। वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक प्रकट नहीं करता। आमोस 3 पहले वो बताता है और उसने प्रतिज्ञा की है ये बातें अंतिम दिनों में होंगी और इसके अंत में सातवीं कलीसियाई काल है जब संदेशवाहक पहुंच गया है। ये वहां होगा, ये वहां प्रकट हो जाएगा, वे टूटी हुई मोहरें प्रकट हो जाएंगी और ये यहां है। अब ये प्रभु के नाम में है, इसका विश्वास करें मित्र। जी हां श्रीमान, बाबुल से बाहर निकलो। बंद करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास 9:30 बज रहे हैं, ये अब सही समय है। बिली और मैं जब हम भारत में जहाज से उतरे, वहां हमारी अंतिम यात्रा थी। अखबार में देख रहा था जो वे लाए थे, अंग्रेजी में लिखा हुआ था और इसमें कहा गया भूकंप समाप्त हो जाना चाहिए, चिड़ियाएं वापस आ रही हैं। तब इसे विस्तार से दिया। वे वहां कुछ अजीब घटित हुआ। भारत में बनी हुई घेराबंदी नहीं होती और वे अधिकांश अपने घर पत्थर से बनाते हैं, बस उन्हें वहां रखते हैं और वहां आसपास गर्म रहता है, कहीं भी भारत के पास, जब तक कि आप पहाड़ों पर ना हो, और वहां कलकत्ता तक और लोग सड़कों पर पड़े हैं, भूखों मर रहे हैं और आदि आदि। अब इसलिए वे अपने घरों को मीनारों में बनाते हैं, अपने घरों की वे घेराबंदी को यहाँ तक बनाते हैं, अपने घरों की एक ओर तक अपने घर के लिए मीनार बनाते हैं और मीनार वहाँ हो सकती है जहाँ उनके कुएं होते हैं, वे अपने पशुओं के लिए खोदते हैं और आदि आदि, और उसके चारों ओर अपनी घेराबंदी करते हैं। और अचानक से कुछ घटित होता है, वे छोटी चिड़ियाएं आप जानते हैं उन पत्थरों में जाने लगती हैं और वे अपने घोंसले बनाती हैं और अपने बच्चे पालती, और कुछ घटित होने लगा। हर दिन जब गर्मी होने लगती है सारे पशु आसपास आएंगे और उन दीवारों की छाया में खड़े होते हैं कि ठंडक में रहें, और सारी छोटी चिड़ियाएं उन स्थानों में रहती हैं और अचानक से वे सारी छोटी चिड़ियाएं किसी अज्ञात कारण से, अब आप जानते हैं कि उस दिन हमने उन छोटी चिड़ियाओं के विषय में क्या कहा था, समझे, किसी अज्ञात कारण से वे उड़ गईं और वे बाहर चली गईं, अपने घोंसले में वापस नहीं आईं। वे बाहर मैदान में चली गईं और वे पेड़ों पर बैठी और जहां कहीं वे जा सकी, या सीधे मैदान में, और पशु भी आसपास नहीं आएंगे, भेड़ें आसपास नहीं आएंगी। वे वहीं मैदान में रुकी रहीं और एक दूसरे से सटी रहीं। ये करने के लिए अच्छी विधि है, वे जानते हैं कि कुछ घटित होने वाला था। तब अचानक से भूकंप आया और हिलाकर दीवार और बाड़े नीचे गिरा दिए और सब कुछ। तब छोटी चिड़ियाएं वापस आने लगी, 3-4 दिन वापस नहीं आई, तब वापस आने लगी। उन्होंने कहा अब भूकंप नहीं आना चाहिए, चिड़ियां वापस आ रही हैं। क्यों? क्या आप विश्वास नहीं करते कि वही परमेश्वर जो उन चिड़ियाओं और पशुओं और भेड़ों को नू के दिनों में नाव में जाने के लिए प्रेरित करता है, वो अब भी वही परमेश्वर है जो उन्हें सुरक्षित स्थान में उड़ा ले जा सकता है? क्या ये ठीक बात है? भाई अब मैं कुछ कहूँ, कुछ घटित होने को है और ये सारी पुरोहितों की दीवारें ढहने वाली हैं, फिर से वापस सामने आने वाला है और सहमति, क्योंकि वे इसे करने जा रहे हैं, वैसे ही निश्चित है जैसे मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ, वहाँ पशु की एक छाप है, ऐसे ही निश्चित जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, और प्रभु के वचन के अनुसार इस राष्ट्र ने ले लिया है। सुनिए, जब आप अजीब सा अनुभव करें, उन दीवारों के पास से हट जाएं, आप वहाँ मर जाएंगे, इसे ना करें, इससे बाहर आ जाएं, इन चीजों से दूर हट जाएं, सुरक्षित स्थान में भाग जाएं जितनी जल्दी जा सकते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांग लें, कुछ और ना लें। भाई मेरी माँ मेथोडिस्ट थी इसलिए मैं समझता हूँ, मैं भी होऊंगा, मेरे पिता बैप्टिस्ट थे मैं होऊंगा, आप ये ना करें, आप कोई मौका ना लें। मैं चिंता नहीं करता ये कितना सादा और नम्र प्रतीत होता है, ये प्रभु का वचन है, आप जितनी जल्दी हो यीशु मसीह के पास भाग जाएं, उसी के साथ तब तक बने रहें जब तक वो आपको अपने पवित्र आत्मा से ना भर दे, क्योंकि वो घड़ी आने वाली है जब आप इसे ढूंढेंगे और ये वहाँ नहीं होगा, इसलिए इसे करने के लिए निश्चय कर लें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं एक क्षण के लिए। स्वर्गीय पिता, ओ मैं बस कभी कभी यहाँ खड़े होकर थरथराता हूँ, मैं उस भयानक घड़ी के लिए सोचता हूँ जो आ रही है, और मैं इसे रोकने का कोई और तरीका नहीं, ये भविष्यवाणी है कि ये आएगा, और मैंने इसके लिए सोचा क्यों नहीं लोग आकर इसे सुनते हैं और क्या वे इसे स्वीकार करने नहीं आएंगे, परंतु निश्चित नहीं, मैं जानता हूं कि आपने कहा है कि वे नहीं आएंगे, इसलिए कि वे नहीं आएंगे, परंतु वहाँ कुछ हैं जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, और जब वे मोहरें वहाँ खोली जाएंगी, वे अपने नाम वहाँ देखेंगे और पवित्र आत्मा उनसे बातें करता रहे। वे आते हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, जो भी है वे आ रहे हैं, क्योंकि आप उनकी अगुवाई कर रहे हैं जैसे आपने उन छोटी चिड़ियाओं और भेड़ों और पशुओं की करी। तू परमेश्वर है। कोई सहज ज्ञान जो उन पशुओं के पास था, जो कि वे जानते थे, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। और यदि वो सहज ज्ञान एक पशु को चेतावनी देता है, उस खतरे से भाग जा, तो पवित्र आत्मा को उस कलीसिया से क्या करना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उससे भरे हुए हैं। परमेश्वर हम पर दयावान हो, हमारी सारी कमियों के लिए तू हमें क्षमा कर। मेरा अर्थ केवल इस प्रचार मंच पर खड़ा होने के लिए नहीं है, और ये लोग दीवार के साथ खड़े हों और इनके हाथ पैर दुखते हैं और बस निकल कर कहें, प्रभु ये सुनने में अच्छा लगता है, हम इस विषय में कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे हृदयों को परखें, यदि वहाँ कुछ गड़बड़ है प्रभु हम पर अब प्रकट करें। कृपा करके हमें उस सामने वाली घड़ी पर ना आने दें जबकि बहुत देर हो गई है। मुझे जांचें, मुझे परखें प्रभु। यहाँ मैं यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हूँ, इन मोहरों को वहाँ टूटते हुए देख रहा हूँ और आकर लोगों को बता रहा हूँ कि जब आपने ये भविष्यवाणी सप्ताहों पहले कर दी कि ये इस प्रकार से होगा, और अब पिता ये यहाँ पर है ठीक आपके सामने। अब मेरे प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, मुझे मेरे हृदय में जांच प्रभु। हम नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवनों में देखें, और यदि वहाँ कुछ है जो ठीक नहीं है हमसे बातें कर प्रभु, हम इसको अभी अब ठीक करना चाहते हैं। अभी इसी समय जबकि सोता लहू से भरा है, जबकि निरंजक जो कि हमारे पापों और अविश्वास को शुद्ध कर सकता है, हम अपने प्राणों को उसमें डुबाना चाहते हैं। हमारे सारे अविश्वास, परमेश्वर हमारे अविश्वास में हमारी सहायता कर, इसे हमसे दूर कर दे प्रभु। हम उठा लिए जाने वाले अनुग्रह को लेना चाहते हैं, हम योग्य होना चाहते हैं जब वे भेद भरे गर्जन सामने गरजते हैं और कलीसिया उठा ली जाती है, हम इसे लेने के लिए तैयार होना चाहते हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें जांच, हम इसमें देखें, और यदि हम देखते हैं कि हम असफल हैं, यदि यहाँ वे लोग हैं प्रभु जिनका उपनामों में बपतिस्मा हुआ और वे वास्तविक सच्चे बपतिस्मे के विषय में नहीं जानते, होने पाए मैं पौलुस के समान विश्वसनीय रहूं, जब वो इफिसुस के ऊपरी भाग से होकर आया और जब उसने चेलों को शोर मचाते चिल्लाते सुना और शानदार समय था, उसने उनसे कहा, क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उन्हें मालूम ना था कि ऐसा कुछ है, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? और उनका बपतिस्मा उस शानदार पवित्र नबी के द्वारा हुआ था, परंतु उन्होंने केवल प्रायश्चित के लिए बपतिस्मा लिया था। तब उनका यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ था और पौलुस ने उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने के लिए आज्ञा दी। प्रभु आपके वचन के उजियाले में मैं हर व्यक्ति को आज्ञा देता हूँ जिसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं हुआ, जल्द ही पानी के पास पहुँचे, जल्द, जबकि आपके पास अवसर है। आप पवित्र आत्मा से नहीं भर गए हैं। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने घुटनों पर आ जाएं, और जब तक पवित्र आत्मा आपका पूरी रीति से पवित्रकरण ना कर दे और अपने प्रेम और भलाई से ना भर दे, जब तक आपका प्राण उसकी उपस्थिति से संतुष्ट ना हो जाए कि आपकी पूरी पूरी इच्छा उसकी सेवा और उसके साथ चलने के लिए ना हो जाए, आपके बाकी जीवन में इसे स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको ये अधिकार देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उसे प्रेम करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया। क्या आप वास्तव में उससे प्रेम करते हैं? अब अपना हाथ ऊपर उठाएं और मेरे उद्धार को खरीदा उस कैलवरी वृक्ष पर। यदि कोई ऐसा बैठा हुआ है जो आज रात्रि अपनी आवश्यकता का अनुभव करता हो, अनुभव करते हैं बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है, आप अपनी आवश्यकता जानते हैं, ये आप पर प्रकट कर दिया गया है, आप चाहते हैं कि प्रार्थना में याद किया जाए। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि आपको दे सके। ओ, हम बपतिस्मा दे सकते हैं, परंतु केवल एक चीज जो हम आपको नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा, ये केवल परमेश्वर करता है। परंतु आपने अपनी आवश्यकता को महसूस किया कि परमेश्वर आपके हृदय से बात कर रहा है, इसकी आपको आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि हम आपको प्रार्थना में याद रखें, कि आप खड़े होंगे ताकि हम आपको जान सकें, जाने कि आप कौन हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक आवश्यकता, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं समझता हूँ यहाँ 150 हैं जो हो सकता है खड़े हैं, हो सकता है ऐसा हो यदि मैं आप सबको देख सकूं। मैं नहीं जानता कमरों में क्या है और बाहर चारों ओर आपने हाथ उठाए हुए हैं और आदि आदि, परंतु आपको जरूरत है। अब आइए हम प्रार्थना करें। अब आप जो देखते हैं कि वे लोग जो आपके पास खड़े हैं और वे मसीह के सामने गवाह के रूप में खड़े हैं, मैं मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं उनमें से एक हूँ कि आज रात्रि अपने नाम को सामने उस मोहर में पालूं जो कि वहाँ सृष्टि के रचने से पहले वहाँ है। किसी चीज ने मेरे हृदय को प्रभावित किया है और प्रभु मैं खड़ा हूँ। क्या ये मैं हूँ? क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर प्रकट कर दें कि मेरा नाम वहाँ पर है, मुझे भर दें और मुझे अपने में मोहर बंद कर लें पवित्र आत्मा के द्वारा। आप जो पहले ही मोहर में बंद हो चुके हैं, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाएं, उनकी ओर घूमें और अपने हाथ उन पर रखें कि उनके लिए प्रार्थना करें। अब पूरी रीति से गंभीरता में रहें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में आपका पवित्र आत्मा इस सारी भक्त मंडली पर मंडराए एक आंधी के समान, और प्रभु हर एक हृदय को पुकारे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नीचे इन लोगों पर भेजें, और वहां जल प्रतीक्षा कर रहा है। जबकि पतरस इन वचनों को बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आया जिन्होंने वचन सुना, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए।